ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? लाइट नहीं है ना तो चेहरा दिख नहीं रहा है। अच्छा, अभी मैं जब लाइट आएगा ना तो मैं फिर से पूछूंगा आप सब कैसे हैं, तो आपका चेहरा, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। जब लाइट चली जाती है ना तब लाइट का महत्व समझ में आता है। चलिए फिर से मैं वही प्रश्न पूछता हूँ, आप सब कैसे हैं? कुछ लोग तुम क्या अरे लगना चाहिए ना, जान है तो अब मैं आप, जान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार मैं ऑडियंस से पूछ रहा था, जान है तो, जोर से बोलिए, जान है तो जहान है। एक खड़े होकर कहता स्वामी भाई जान है तो जहाज है, राइट? मैंने कहा सर्विस करते हो? बोला सर शिपिंग में हूं सर। मैंने कहा सपने में भी जहाज दिखाई देते क्या? बोला यस सर। तो जान है तो जहान है, जान है तो जहाज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहते हैं कैसे खुश रहें, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी चुनौतियां, इतना संघर्ष है। आई डू अप्रिशिएट ऑल द चैलेंजेस दैट एवरी वन ऑफ यू आर फेसिंग। बहुत प्यार से आपकी चुनौतियों का मैं सम्मान करता हूं। बट दोस्तों कहते हैं लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑप्शंस, लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, इन दोनों ऑप्शन से एक कोई सा चूज करना। पहला ऑप्शन ये है कि जीवन में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी चुनौतियां, इतना संघर्ष है, ये सब ठीक हो जाएगा फिर मैं बड़े आनंद में रहूंगा, ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू, अगर मैं आनंद में रहता हूं तो ये सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरे अंदर शक्ति आ जाती है, विच इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट और सेकेंड? माई गॉड, रियली बुद्धिशाली है, शिपिंग एविएशन टूरिज्म, यस। नाउ दिस इज एन हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस को ना, इसको प्रयोग में लेकर आना और इसको अनुभव करके देखना, राइट? और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप वापस जाएंगे ना तो जब आप में से कितने भाई बहन है जो पहली बार ज्ञान सरोवर आए हैं, वो जरा हाथ उठाएं। वाओ, आप सभी का बहुत प्यार से स्वागत है, एल्लाइकुम वालरे वालरे स्वागतम, राइट? दैट्स मलयालम। आई एक्सटेंड अ वेरी हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो शिपिंग एविएशन टूरिज्म से जुड़े हैं, वो जरा हाथ उठाएं, डायरेक्टली कनेक्टेड, ओके। आप में से कितने हैं जो परिवार सहित आए हैं, वो जरा हाथ उठाएं, ओके। कितने आए हैं जिन्होंने बच्चों को भी घसीट के लेकर आए, वो हाथ उठाओ, क्योंकि वो तो अरे कहां जा रहे हैं। कौन कौन है जिन्होंने बच्चों को लेकर आए, हाथ उठाइए। वाओ, ये सभी माता पिता अपने लिए जरा जोर से तालियां बजाएं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे कोई सत्संग में बुलाते तो बच्चों को लेकर आना बड़ा मुश्किल होता, माउंट आबू है, बच्चे बहुत, हम लोग खेलेंगे कूदेंगे दौड़ेंगे तो बच्चे आ गए, राइट? ओके, जिनके घर में बच्चे हैं ना, वापस जब जाएंगे ना तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हमेशा हम अपने बच्चों के सामने बहुत चैलेंजेस बताते हैं। टेंथ क्लास है, ट्वेल्थ क्लास है, यू नो यू हैव टू अपीयर फॉर सो मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ऑल दैट इज परफेक्टली ओके। बच्चों को भी पता है, शायद हमसे ज्यादा उनको पता है कि कितना कॉम्पिटिशन आज के एकेडमिक फ्रंट में है। लेकिन कभी भी ना बच्चों को डराना नहीं, हमारा काम डराना नहीं है, हमको पता है उनको क्या चुनौती है, उनको शक्ति देना हमारा एक काम है, राइट? इसलिए लेट प्रेसिडेंट भारत रत्न डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे, वी शुड टीच अवर किड्स हाउ टू ड्रीम। बच्चों को अच्छे अच्छे सपने दिखाओ। एंड ही यूज्ड टू कंटिन्यू, ड्रीम्स आर नॉट समथिंग दैट वी सी इन स्लीप, बट ड्रीम्स आर समथिंग विच शुडंट अलाउ अस टू स्लीप। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, लेकिन सपने वो जो हमें सोने नहीं देवे। कल इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं सुन रहा था, हु इन्वेंटेड एरोप्लेन्स, आपने और हमने सुना है कि इट्स द राइट ब्रदर्स हु इन्वेंटेड एरोप्लेन्स, लेकिन राइट ब्रदर्स ने अचानक एक सुप्रभात में एरोप्लेन इन्वेंट नहीं किया, इट वॉज अ लॉट ऑफ, बहुत युद्ध करना पड़ा, बहुत सारे लोग इस जर्नी में थे। अगर हमको किसी को क्रेडिट ही देना है तो क्रेडिट उस व्यक्ति को देना चाहिए जिन्होंने पंछियों को आसमान पर उड़ते हुए देखा और मन में एक श्रेष्ठ संकल्प किया कि वन डे ह्यूमन बींग्स कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स, एक दिन मनुष्य पंछियों की तरह उड़ सकता है, जिसने वो संकल्प किया, जिसने वो सपना देखा, एक्चुअली ही इज द पर्सन हु शुड बी क्रेडिटेड ऑफ डिस्कवरिंग एंड इन्वेंटिंग एन एरोप्लेन। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राइट ब्रदर्स, लेकिन उस बंदे को मिलना चाहिए। आइंस्टीन हमेशा कहते थे एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस, इस संसार में जो भी घटना घटता है वो दो बार होता है, पहले व्यक्ति के मन में और दूसरी बार रियलिटी में। क्योंकि विश्वविद्यालय एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट ऑफ डॉक्टर कलाम ऑफ विजन 2020, और काफी बार मैं बच्चों से मिलता हूं, तो एक बार मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों क्या सपना है आपका जीवन में, राइट? और एक नाइन्थ स्टैंडर्ड के गर्ल स्टूडेंट ने एक बहुत सुंदर चित्र बनाया, अ ब्यूटिफुल इमेज, राइट? बहुत सुंदर दुनिया, इसको जन्नत कहते हैं, बहिष्ट कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं, गार्डन ऑफ एडन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, आप सतयुग कहो, विष्णुपुरी कहो, कृष्णपुरी कहो, जो दुनिया बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, मैंने कहा बच्चों एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहां प्रकृति बहुत अच्छी होगी, बच्चों के चेहरे में तो इमोशन से नहीं आते। मैंने कहा बच्चों ऐसी दुनिया आने वाली है जहां हेल्थ भी होगा, वेल्थ भी होगा, हैप्पीनेस भी होगा। सारे बच्चे मुझे घूर के देख रहे थे। मैंने कहा बच्चों ऐसी दुनिया आने वाली है जहां एग्जाम और पढ़ाई का टेंशन भी नहीं होगा। एक खड़े होकर कहता सर वो दुनिया कब आएगी सर, मैंने कहा लेकर आनी पड़ेगी। यस, आप अपने बच्चों के एग्जाम्स को चैलेंजिंग मानते हो ना? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आजकल का जो लेटेस्ट एग्जाम होता है ना, इफ यू अप्लाई फॉर एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी, जीआरई, जीमैट, टोफल, सैट, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। आपके बच्चे शायद हमसे बहुत ज्यादा जानते होंगे। आजकल का एग्जाम का फिलॉसफी पता क्या है? आप जब चाहिए एग्जाम लिख सकते हो। और आजकल का एग्जाम वो पेन पेंसिल वाला नहीं होता, इट्स ऑल ऑनलाइन एग्जाम। आपने अप्लाई किया, यू गेट अ पासवर्ड, लॉग इन, यू गो टू द डेजिग्नेटेड सेंटर, एनी टाइम यू कैन अपीयर फॉर दैट एग्जाम। दे हैव मेड इट सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लेक्सिबल। अब जस्ट इमेजिन करिए, आप एग्जाम के लिए बैठे हैं, पहला प्रश्न आता है, अगर आपने उस प्रश्न का सही जवाब दिया ना, तो कंप्यूटर क्या करता है, उससे ज्यादा कठिन प्रश्न पर आपको लेकर जाता है। बाई चांस आप इतने बुद्धिशाली उसको भी सही जवाब देते हो, तो कंप्यूटर उससे कठिन, वो भी आपने सही जवाब दिया उससे कठिन। जैसे इमेजिन करिए आपके साइड पर एक दूसरा कैंडिडेट बैठा है, पहला प्रश्न आया, बाई चांस उसने गलत जवाब दिया, तो कंप्यूटर क्या करता है, उससे सहज प्रश्न पर लेकर आता है, वो भी गलत, उससे सहज प्रश्न, वो भी गलत, उससे सहज प्रश्न। एग्जाम अप, कंप्यूटर बड़े मुस्कुराते हुए कहता है योर टाइम इज अप, प्लीज वेट टिल वी अनाउंस द रिजल्ट। और रिजल्ट इंस्टेंट होता है आजकल, बिफोर द कंप्यूटर इज टैबुलेटिंग द रिजल्ट, आप धीरे से बाजू वाले कैंडिडेट से पूछते हो एग्जाम कैसा था, तो कहेगा वाह इतना वंडरफुल एग्जाम। फिर वो आपसे पूछेगा आपका एग्जाम कैसा था, आप कहोगे पता नहीं किसका चेहरा देखकर आज मैं बाहर निकला। तब तक कंप्यूटर में बीप आएगा, द रिजल्ट इज डन। आप बताइए दोस्तों कौन पास होगा, आप या आपके बाजू वाला कैंडिडेट? आप पास होंगे या बाजू वाला कैंडिडेट? आप पर कठिन से कठिन, कठिन से कठिन, कठिन से कठिन जवाब, प्रश्न और जवाब, कौन पास होगा? बोलिए ना, राइट आंसर है, थोड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए। आप नहीं बोलिए, बोलिए हम पास होंगे, बोलिए ना, मैं पूछ रहा हूं तो आप जवाब तो ऐसे देखना, बोलिए हम पास होंगे, बोलिए यस करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। तो आज का एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाने के एडमिशन की अगर यह प्रक्रिया हो सकती है, तो जीवन रूपी एग्जाम्स में भी जिसको जितना ज्यादा कठिन एग्जाम आता है, एक्चुअली आपको उतनी ज्यादा शक्ति है और आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, राइट? तो अभी मैं फिर से पूछूंगा आप कैसे हो, तो कैसे जवाब देना मैं बताता हूं। तभी थोड़ा अपने जहाज को सीधे बिठाए, कुछ लोग का जहाज इधर उधर डोल रहा है। नहीं मैं जानता हूं सुबह सुबह उठकर बैठे हैं, है ना, राइट राइट, ठीक है, लेकिन बड़े खुशी से कहना, ठीक है ना। आज मैं कहूंगा आप कैसे हैं, तो बड़े मुस्कुराते हुए कहना वाह 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 मेरा जीवन वाह। हाँ सभी करिए, आप कैसे हैं, कुछ लोग वाह। अगर मैंने किसी को भी ऐसा करते हुए देखा तो बड़े प्यार से आपको बुलाऊंगा, यहां लेकर आऊंगा, गुलदस्ता किधर है, बड़े प्यार से सम्मान करूंगा, फिर से डोंट वरी, मैं किसी को बुलाने वाला नहीं, भाई जान है आपका, जहाज है आपका, करना है तो करो, लेकिन जितना खुशी से आप करते उतना योर ब्रेन वुड स्टार्ट गिविंग यू दैट पावर, एंडोर्फिन्स कहते हैं, एनकेफलिन्स कहते हैं, ठीक है। आप सब कैसे, बड़े खुशी से करो वाह 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 मेरा जीवन वाह। अभी दूसरा कहेंगे वाह मेरा परिवार वाह, करिए वाह 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 मेरा परिवार वाह। तीसरा कहेंगे वाह ये विश्व वाह, वाह 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 ये विश्व वाह। चौथा करेंगे वाह प्रकृति वाह, वाह 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 प्रकृति वाह। लास्ट कहेंगे वाह ईश्वर वाह, वाह 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 ईश्वर वाह। अच्छा, आप में से कितने माता पिता चाहते हैं राइट कि आपके बच्चे हर दिन सुबह बड़े खुशी से उठें, वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा, आप में से कितने माता पिता चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े खुशी से स्कूल में जाएं, वो जरा हाथ उठाएं। गुड। आप में से कितने माता पिता हैं जो चाहते हैं कि आपके बच्चे एग्जाम के दिन में बड़े खुशी से उठकर कहें, मामा आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बड़े खुशी से एग्जाम लिख कर आऊंगा, वो जरा हाथ उठाएं। कुछ बहनों का दोनों दोनों हाथ उठाने का मन कर रहा है, ठीक है, आप नीचे रखिए। अच्छा, वेरी गुड है, चाहना बहुत अच्छी है। अब मैं पूछता हूं दोस्तों, आप में से कितने दोस्त हैं जो बड़े खुशी से सुबह उठते कहते हैं वाह आज मैं ऑफिस जा रहा हूं, वो जरा हाथ उठाए। अच्छा, कुछ लोग हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं, बाकी लोग का क्या हुआ? नहीं स्वामी भाई, ज्ञान सरोवर में आए तो आनंद ही आनंद। एक दिन आप हमारे ऑफिस में 24 घंटा बिताकर देखो, आपको समझ में आएगा हमारे ऑफिस का चैलेंजेस क्या है। वो ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग मुझे निचोड़ने में लगे हुए हैं, और ऐसे समय पर ब्रह्मा कुमारी इसके फैकल्टी कहते सुबह उठकर वाह 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 मेरा जीवन वाह। कैसे पॉसिबल हो सकता है? यस, इट्स वेरी मच पॉसिबल। मुझे एक कैरेक्टर, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, और वो रियलिटी में भी थे, और वो है श्री कृष्ण, राइट? अगर आपने श्री कृष्ण की कहानी अगर पढ़ी होगी तो कहते हैं श्री कृष्ण का जन्म लेने के पहले उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, यस और नो? मामा जी बैठे थे साइड पर। जन्म लेने के पहले प्रॉब्लम, लेकिन कभी देखा श्री कृष्ण को स्ट्रेस में, श्री कृष्ण को टेंशन में? नो, ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ आनंद, राइट? ये आनंद की जो अवस्था है ना, इट्स अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, इट्स अ स्टेट ऑफ पावर, इट्स अ स्टेट ऑफ कंट्रोल, इट्स अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसको बहुत प्यार से भगवद गीता में लिखा है अस्तित्व प्रज्ञ कंडीशन। हे अर्जुन, सुख दुख मान अपमान जय पराजय ठंडी गर्मी, हे अर्जुन इफ यूर इन ए स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी बैलेंस, और धीरे धीरे उस बैलेंस के स्टेज पर हम जरूर जरूर पहुंच सकते हैं। तो मैं चाहूंगा जो आज से आप सुबह से जो सीख रहे हैं ना, दैट इज व्हाट इज द टेक्निक ऑफ पुटिंग यू इन बैलेंस। और मैंने आपको ये एक्सरसाइज भी क्यों कराया पता है? खास उसके पीछे कारण था, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मेरे को सुनना और सुनते हुए जागृत रहना। इसलिए मैंने दीदी को कहा सबको आगे बुलाओ, एकदम सामने बैठे रहना चाहिए स्वामी भाई के। आप में से कितने भाई बहन जो सुबह 4 बजे आज उठे, वो जरा हाथ उठाए। बाबा, आपने जरा जोर से तालियां तो बजाइए। आई सल्यूट यू सर। यस, उठे आप। आप में से कितने हैं जो 5 बजे उठे, वो हाथ उठा। शर्माओ नहीं है, उठो, हाथ उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। आप में से कितने जो 6 बजे उठे, वो हाथ उठाइए। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, उसके आगे मैं पूछकर फायदा भी नहीं है, वो तो मुंबई के बच्चे भी उठ जाते हैं। आप ध्यान सब में आके उठे, कौन सी बड़ी बात है? यस, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, यू से इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन, आई से जस्ट वर्क ऑन टू योर सेल्फ, एवरी अपॉर्चुनिटी विल बी अ स्ट्रेंथ फॉर यू। सारे स्टूडेंट्स रात को लेट सोते हैं और बहुत लेट उठते हैं, अगर कोई विद्यार्थी अगर सुबह जल्दी उठ गया ना, ही हैज अ कटिंग एज ऑफ अदर्स। कहते हैं इन अ लैंड ऑफ ब्लाइंड पीपल अ वन आईड मैन इज वेरी वेरी पावरफुल। ऐसे गांव में जहां जिनके पास किसी के पास नेत्र नहीं है, अगर वहां पर किसी व्यक्ति को एक भी आंख हो गई ना, वो राजा बन जाता है। एक ऐसा गांव जिसमें किसी को स्विमिंग करना नहीं आता है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति तैरना जानता है ना, वो राजा बन जाता है, राइट? मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, आजकल जो स्टूडेंट्स है ना, उनका मन इतना भटकता है, माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लर्न हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, यू 100% यू विल हैव अ कटिंग एज। यस, आई डू अग्री, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। जहां देखो लोग गुस्सा कर रहे, नफरत कर रहे, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बहुत पीसफुल, लवफुल हैप्पी हो सकते हो तो कॉन्फ्लिक्ट के बजाय पर यू विल बी एबल टू गेट कॉपरेशन. इट्स एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल टूडे बिकॉज एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज वाइब्रेटिंग इन अ वेरी लो फ्लो ऑफ एनर्जी. वहां थोड़ा सा आपने अपना पावर बढ़ा दिया और एक ऐसी सिस्टम बना दी जहां पर आपके पास वो पावर बैकअप है. यू हैव गॉट अ पावर बैंक. आपके पास लाइट नहीं है लेकिन आप फ्लाइट में जाते हो कहीं पर भी जाते हो ना तो एयर होस्टेस पूछती है या काउंटर पर पूछती है सर डू यू हैव अ पावर बैंक हैव यू कैप्ट इट इन द लगेज इन केस प्लीज कीप इट विथ यू बिकॉज इट्स यू हु इज रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम द सेफ्टी इश्यू. अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई ना तो आप वो पावर बैंक अपने साथ लेकर जा सकते हैं जहां चाहिए चार्ज करो परिस्थिति को आप मैनेज करो. अगर एक जड़ चीज कर सकता है आप और हम तो चैतन्य है ना. इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरा सेशन अभी 10 बजे से लेकर 11 बजे तक चलेगा. अगर मैंने किसी को भी सोते हुए देखा राइट बहुत स्नेह प्यार से आपके पास आऊंगा. मुझे पता आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं बड़े बड़े पोस्ट पर है. इस जानकारी के साथ मैं आपके पास आऊंगा बहुत प्यार से आपको उठाऊंगा. यहां पर पीछे बहुत सारे सीट हैं वहां पर मैं बिठा दूंगा आपको एंड आई एम गोइंग टू डू दैट राइट. अच्छा मैं आपसे पूछता हूं हाँ ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि कल रात आप लेट आए हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं दैट्स ओके लेकिन फॉर दोज पीपल हैव गॉट अप एट 4 o'clock ऑल्सो आप कहेंगे स्वामी आज तक जीवन में 4 बजे उठा नहीं अंटिल एंड अनलेस आई हैव गॉट अ फ्लाइट इन द मॉर्निंग आज यहां पर उठे राइट तो आपको नींद आने के चांसेस है. और मैंने अगर आपको देखा नींद करते हुए वहां से उठाऊंगा और यहां बिठा दूंगा. अच्छा जब यहां बैठेंगे कैमरा भी आप पर फोकस रहेगा. अच्छा बताइए यहां बैठने के बाद आपको नींद आएगा क्या क्यों अरे भाई परिस्थिति तो सेम है ना वहां बैठे यहां बैठे परिस्थिति इज द सेम. आप सुबह 4 बजे उठे हो फिर यहां बैठकर फिर नींद क्यों नहीं आएगा. अच्छा चलो कैमरा भी बंद कर देते हैं फिर भी नींद नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा. अरे भाई मैं कहूंगा लोगों को कहूंगा आप भी बंद आंखें बंद करो आप बस उनको देखते रहो तो सर फिर भी नींद नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा. परिस्थिति चेंज नहीं हुई है सेम है सिचुएशन लेकिन यहां बिठा देंगे तो आपको नींद नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा. क्या चीज सर चैलेंज नहीं वहां पर भी तो चैलेंज है ना सर. अच्छा यहां ज्यादा चैलेंज है क्योंकि लोग देख रहे हैं लेकिन मैं कहूंगा चलो लोग नहीं देखेंगे आपको कैमरा बंद हो जाएगा तो यस मैडम के लिए तालियां बजाइए दैट्स द राइट आंसर. यू आर इन एन एलिवेटेड पोजीशन आपकी स्थिति ऊंची हो गई है वहां पर आप सबके साथ थे. जैसे आप स्टेज पर चढ़े इस सम्मान्य आध्यात्मिक मंच पर चढ़े धीरे से आपका स्वमान जागृत हुआ. वॉच मैडम सोल वॉज एब्सोल्यूटली द राइट आंसर. आपने अपने आप को प्रोग्राम दिया आपकी अवस्था और स्थिति ऊंची हुई परिस्थिति वैसी की वैसी है राइट. इसलिए अगर मैं आपको किसी को सोते हुए देखूंगा तो बड़े प्यार से यहां बिठाऊंगा और आपको क्या काम करना सबको दृष्टि देते रहना. अगर आपने किसी को सोते हुए देखा तो उनको भी उठाकर साइड में बिठाना. आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द केरला पुलिस अकेडमी बिता रही है लोग ना जो इंस्पेक्टर्स के पोस्ट होते ना यंग बॉयज एंड गर्ल्स 4-5 बजे से उठ के भागते रहते राइट. और मेरा प्रोग्राम रहता है तनाव प्रबंधन दोपहर के बाद. और मैंने जैसे ही देखा स्टूडेंट्स को सोते हुए तो मैंने उनके असिस्टेंट कमांडेंट को कहा सर मैं अगर किसी को भी सोते हुए देखूंगा ना तो यहां बुला दूंगा. स्वामी ना तो जो करना है इन पर करो इनको सुधार दो सर. जब 1.5 घंटे के बाद जब असिस्टेंट कमांडेंट वोट ऑफ थैंक्स के लिए आए तो क्या देखा मेरे सामने बस 5-6 लोग बैठे बाकी सब लाइन से यहां पर यस और एकदम मुस्तैद होकर एकदम शक्तिशाली होकर राइट. इसे ये बहुत बहुत जरूरत है. तो अगले 1 घंटे के लिए मैं आपका चेहरा देखता रहूंगा बड़े खुशी में बड़े आनंद में रहना. और ये अगले 3 दिन में संस्कार बन जाना चाहिए. और जैसे ही आप मुंबई जाएंगे दिल्ली जाएंगे त्रिवेंद्रम जाएंगे एर्नाकुलम जाएंगे हर दिन सुबह उसी आनंद के साथ उठना. नो मैटर देयर सो मेनी एग्जाम्स देयर वेटिंग फॉर यू एट ऑफिस. और कहते हैं बच्चे देखते हैं और बच्चे करते हैं. आपका चेहरा देखकर बच्चों का चेहरा देखो कैसे हो गया है. डेली जॉब मूड सेट वर्क. मंडे देखो इसकी हालत क्या है. आप लोग मंडे ज्वाइन करने वाले ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे देखो आनंद की अवस्था. संडे बड़ा शक्तिशाली और संडे शाम को हार्ट अटैक. बच्चे देखते हैं और बच्चे करते हैं. तो अब हम अपने चेहरे पर जरूर जरूर काम करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द क्वेश्चन इज, हमारा चेहरा ऑफिस में क्यों चेंज होता है? व्हाट आर एग्जाम्स दैट वी आर फेसिंग? इनफैक्ट आई आस्क माय एमबीए स्टूडेंट, हाउ डू यू डिफाइन मैनेजमेंट? तो मेरे बच्चों ने कहा, सर मैनेजमेंट इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. और आपको चैलेंजेस प्रोफेशनल लेवल पर यही आता है. इवन एट योर फैमिली लेवल द चैलेंजेस इज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजिंग मेन, मेटीरियल, मनी, मशीनरी, मेथोडोलॉजी, राइट? यही सब हम और आप मैनेज करते हैं. घर में जो बहन होती वो भी यही मैनेज करती है. बट द क्वेश्चन इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट मैनेजेस ऑल दिस रिसोर्सेस, इट इज अवर माइंड. हमारा मन है. जैसे कहते मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार. मैंने अपने एमबीए स्टूडेंट से पूछा, बच्चों बचपन से लेकर टिल यू आर डूइंग योर एमबीए, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सिलेबस फोकस ऑन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, दैट्स अ ह्यूमन माइंड? अब बच्चे बड़े मुस्कुराते हुए कह रहे, सर आउट ऑफ सिलेबस सर, देन व्हाट आर वी टीचिंग यू? मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप 4 बजे उठे या नहीं उठे, आप में से कितने भाई बहने सुबह का 6:30 बजे का सत्र अटेंड किए, वो जरा हाथ उठाएं. यस, आप भले टेक्निकल सेशन अटेंड करो नहीं करो, फिर भी मैं कहता हूं 100% अटेंडेंस होना चाहिए. लेकिन सुबह का टेक्निकल सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द क्रक्स. इतनी दूर ज्ञान सरोवर आए गए हो ना, तो इन्वेस्ट योर टाइम, थोड़ा सा निद्राजीत बनो और वो सुबह का सत्र अटेंड करो. क्योंकि आज मैं अगर आपके सामने खड़ा हूं और कुछ मीठी मीठी बातें आपको बता रहा हूं बड़े प्यार और सम्मान के साथ, आज से 22 वर्ष पहले मैं भी आपके तरह बैठा था और जब सुबह 6:30 बजे का सत्र सुना तो मैंने महसूस किया, इतने वर्ष यूनिवर्सिटी में पढ़ा, इतने वर्ष यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लेकिन जो सुबह का सत्र मैं जो सुन रहा हूं, वो जो मुझे क्यों नहीं सिखाया गया यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में. इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर माइंड. और जब आप मन को मैनेज करने लगते हो ना, तो आपका चेहरा पता कैसे होता है, राइट? यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन. एक बहुत ब्यूटीफुल एक स्लोगन है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू रीड विथ मी, फिर चेहरे पर आएंगे. सभी बोलिए, द ग्रेटेस्ट चैलेंज टू एनी प्रॉब्लम इज टू स्टेट द प्रॉब्लम इन अ वे दैट विल अलाउ अ सॉल्यूशन. जब आप प्रॉब्लम किसी के सामने रखते हो ना, तो उस प्रॉब्लम को इस तरीके से रखो ताकि आप उस सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं. किसी को प्रॉब्लम बोलकर उसको हार्ट अटैक नहीं दो, उसको सॉल्यूशन की तरफ गाइड करो, राइट? और इसलिए अपने मन पर काम करना बहुत जरूरत है. एंड इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, आपका चेहरा कैसा होगा? एकदम मुस्कुराता हुआ. तो हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप ये कहना, सभी बोले यस इट्स पॉसिबल. अच्छा अभी मैं देखता हूं. जैसे इमेजिन करिए दोस्तों, एक व्यक्ति है जिनके दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, क्या वो रस्ते से चल सकते हैं? बोलो यस. थोड़ा जोर से बोलिए ताकि आजू बाजू कोई सो रहा होगा तो उसको जागृति हो. ठीक है, गुड, वेरी नाइस. अच्छा बताइए दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति है जिनके दोनों हाथ नहीं है, क्या वो रस्ते से चल सकता है? गुड. अच्छा दोस्तों बताइए, एक ऐसा व्यक्ति है जिनके दोनों हाथ नहीं है, क्या वो साइकिल चला सकता है? कुछ लोग सोच, आप ज्यादा सोचो नहीं, अपने मन को छोटे बच्चे की तरह लेकर आओ और यस यस बोलते रहो. कुछ लोग ना अपना बुद्धि लगाते, कैसे पॉसिबल है? कभी टाइम मिलेगा ना स्वामी भाई के साथ चलना, और यही क्वेश्चन आपके साथ मैं छोटे छोटे बच्चों को पूछूंगा. वो तो ऐसा जोर से बोलते हैं, उनका स्कूल हिलने लगता है. यस, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते, पहले यस तो बोलो फिर बाद में सोचेंगे. हाँ, राइट? तो अगर आपको यही संस्कार बच्चों को देना ना, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाओ, यस बोलते जाओ. एक ऐसा व्यक्ति जिनके दोनों हाथ नहीं है, क्या वो साइकिल चला सकता है? वेरी गुड. एक ऐसा व्यक्ति जिनके दोनों हाथ नहीं है, क्या वो कार चला सकता है? ज्यादा बुद्धि नहीं लगाओ, यस यस बोलते रहो. हाँ, एक ऐसा व्यक्ति है जिनके दोनों हाथ नहीं है, क्या वो एरोप्लेन उड़ा सकता है? माई गॉड, तालियां बजाइए. वेरी गुड, वेरी गुड. बस हो गया, आपका काम है यस यस बोलते जाना. और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी परमात्मा यही कहते हैं, जिसने हांजी का पाठ पक्का किया, आपको विश्व राज्य तिलक मिल जाएगा. बच्चे यस, इफ यू से, अगर भगवान कह रहा है आप ये कर सकते हो, इसलिए तो आपको कह रहा है, जस्ट डू इट, जस्ट से यस. एंड देन
द होल नेचर, द होल प्रकृति, द होल वर्ल्ड विल गिव यू द पावर, क्योंकि आपने या क्लिक द बटन ऑफ द सोल्यूशन. वैसे अगर मैं आपको यहां छोड़ दूं ना, तो बहुत लोग जाते जाते पूछेंगे, स्वामी भाई ना कुछ भी बोलता रहता है यार, एक व्यक्ति के दोनों हाथ में एक एरोप्लेन कैसे चला सकता है? जरूर वो संकल्प जरूर आएगा, राइट? अगर वो सोल्यूशन है, अगर किसी ने किया है, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछते ही नहीं था. यह द फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट ऑफ द वर्ल्ड. गुड न्यूज, शी इज ए लेडी, हर नेम इज जेसिका. दोनों हाथ नहीं है, बट शी वॉज एबल टू फ्लाई एन एरोप्लेन. इट्स ट्रू, आपने यस बोला, इट्स वेरी मच ट्रू. लेट्स वॉच जेसिका इन एक्शन. कैन वी गेट द ऑडियो ब्रदर?
It is flying with no hands, literally. Jessica Cox is the nation's first and only licensed pilot who has no arms.
When I tell people that I'm a pilot, they're like, what?
Jessica was born without arms, but she can do almost everything with just her feet, from putting in her contacts to texting her friends on her cell phone, even playing the piano. Jessica has a black belt in Taekwondo. She makes a living as a motivational speaker, but always had a fear of flying. So Jessica decided to face her fears head on and got a pilot's license. She talked with our Jim Murray.
How is it possible to fly a plane without hands?
You know, it's even harder.
So our trainer puts that. How it is possible to fly an aeroplane without hands? Jessica says, it's very hard for me also to believe it. But just say yes. And do it. Try it.
For me to believe what I'm talking about it, you just do it.
Jessica invited us up for a spin high above the Arizona desert. Her lucky flying shirt reads, look, Ma, no hands. She showed us how she controls her plane.
And I would have my right foot right here on the yoke and my left foot here on the throttle. And I'm using my big toe to push down the push-to-talk switch.
So you feel perfectly safe?
I do, yes.
Is there any issue of safety at all?
You know, there's not. After, you know, an hour, just like driving with her in a car after an hour or so, you don't even really realize she has no arms.
Our cameras were mounted inside the small plane to see Jessica in action. Watch as she takes off. Jessica uses her left foot to control the throttle. Then her right foot pulls out the wheel as she lifts off. It looks scary, but she does it like a pro. And watch, after she makes a picture-perfect landing, she stretches her leg and opens the cockpit windows.
How was the flight?
उनसे पूछते हैं, how was flying? और बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, it was fun. बहुत आनंद में थे.
Fun.
जोर से जैसे के लिए तालियां बजाइए. Yes. It's very much possible. हमारे मन के अंदर इतनी असीम शक्ति है, right? एक बार हमने ये समझ लिया, यस इट्स पॉसिबल. सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स टू मैनेज ऑल रिसोर्सेस इज द माइंड. प्रश्न ये उठता है कि हमने मन को कितना समझा, और इसलिए हमारे आदरणीय कमलेश दीदी जी का भी एक लेक्चर है, माइंड जस्ट चिल, सम ऑफ दैट टॉपिक. जरूर हर सेशन आप जरूर जरूर अटेंड करिए. बट चलो, आप सभी को प्रोफेशनल लाइफ में या फैमिली लाइफ में यू हैव टू मैनेज ऑल दीज रिसोर्सेस. पता है दोस्तों चैलेंजेस क्यों होता है? चैलेंजेस इसलिए आता है बिकॉज अ रिसोर्स विच कैन नेवर बी मैनेज्ड. बताइए कौन सा रिसोर्स है विच कैन नेवर बी मैनेज्ड, जिसके कारण आपको चुनौती होती है? यस, द ग्रेटेस्ट रिसोर्स विच कैन नेवर बी मैनेज्ड, राइट? जब मैंने ऐसा चित्र दिखाया तो किसी ने पूछा, सर इज इट वाइफ सर? मैंने कहा अपना पर्सनल चैलेंज को ना ऑफ यहां पर मत लेकर आओ. वाइफ कैन ऑलवेज बी मैनेज, उसको बीच बीच में एक्नॉलेज करते रहना, बीच बीच में अप्रिशिएट करते रहना, बहुत आराम से मैनेजमेंट हो जाएगा. बट अब जानो, राइट? बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स विच कैन नेवर बी मैनेज इज टाइम. आप कहेंगे ऐसे कैसे कह सकते हो स्वामी भाई, आपने 9:30 बोला, वी वर शार्प ऑन 9:30. दैट्स योर पंचुअलिटी एंड डिसिप्लिन, दैट्स अ वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक फीचर. किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपको ज्यादा लोग चाहिए ना, तो आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हो. कम हो गए तो बहुत प्यार से टाटा बाई बाई कर सकते हो. अगर आपके पास धन नहीं है तो धन को लोन लो. अगर बहुत ज्यादा धन है तो आप बिल गेट्स की तरह समाज सेवा करिए. बट टाइम इज कॉन्स्टेंट. सूर्योदय से सूर्यास्त, सूर्यास्त से सूर्योदय कॉन्स्टेंट है, और इस कॉन्स्टेंट टाइम पर आपको इतना काम करना है. और जब ब्रह्मा कुमारी इसमें आते हो तो हमारी बहनें भाई लोग बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं मेडिटेशन भी करना। आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? जरूर आता है भाई, यहां पर श्वास लेने के लिए टाइम नहीं है, ऊपर से लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, हाउ इट इज पॉसिबल? यस, टाइम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स। लेकिन आज मैं आपको खुशखबरी देता हूं, राइट? द खुशखबरी इज नेचर हैज गिवन अस अ वेरी ब्यूटिफुल गिफ्ट टू मैनेज अवर टाइम एंड ऑल आवर स्ट्रेस। जो पहली बार आए हैं वो जवाब दिए, प्रकृति ने एक बहुत सुंदर हमें तोहफा दिया है कि हम अपने चैलेंजेस के लिए एम्पावर कैसे हो जाएं और अपना समय का प्रबंधन कैसे करें, एंड दैट इज स्लीप, नींद। इसे मैंने कहा था ना, मेरे क्लास में अगर कोई भी सोएगा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यस, पहले बजे मुझे बड़ा गुस्सा आता था, जब से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा ना, राइट, मुझे इतना अच्छा लगा। और आजकल मेरे क्लास में अगर कोई भी सोता है ना तो मैं उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, मैं तो सोने दो सोने दो सोने दो, राइट? यस, स्लीप इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स, ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर। और खास कर आप लोग सभी शिपिंग एविएशन टूरिज्म में हैं, द ग्रेटेस्ट चैलेंज इज दिस। मैं जब भी फ्लाइट में जाता हूं तो मैं ये एयरपोर्ट में देखता हूं, वेदर इट्स अ डोमेस्टिक एयरपोर्ट और वेदर इट्स एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द मेजोरिटी ऑफ द टेक ऑफ टेक्स प्लेस एट अर्ली मॉर्निंग टाइम, यस और नो? यस। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है द ट्रांसपोर्ट ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर पर होता है, और वो है कि अगर ड्राइवर या पायलट अपनी नींद को अगर कंट्रोल नहीं कर पाया। इसलिए मैंने कहा था निद्रा जीत बनना है, और इसलिए अभी भी आप जागृत रहे। कौन कौन लोग जागृत है वो जरा हाथ उठाए, वेरी गुड वेरी गुड है। हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां सोना चाहिए वहां सोना चाहिए, जहां जागृत होना चाहिए यू शुड बी जागृत, हमारा जस्ट उल्टा है, जब सोना चाहिए उलट फेर करते रहते, नींद ही नहीं आ रहा है। और जहां पर जागृत होना चाहिए, राइट, ये लोग जो इनफैक्ट एरोप्लेन इज द मोस्ट सेफेस जर्नी इन दिस वर्ल्ड इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स। सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग है दैट्स द रोडवेज, जो गाड़ी चलाते ना, आपको पता है वो जो ड्राइवर है कितना समय सोता है जिसके कारण एक्सीडेंट होता है? आपको क्या लगता है आधा घंटा सोते सोते एक्सीडेंट होता है क्या? जस्ट अ कपल ऑफ सेकंड्स, ठप, कपल ऑफ सेकंड्स की बात कर रहा हूं मैं। और कुछ स्टैटिस्टिक्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ने कहा, उन्होंने कहा अप्रोक्सीमेटली 0.022 सेकंड्स छपकी लिया, एंड योर व्हीकल इज मूविंग इन द मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे एट 140 किलोमीटर पर आवर, छोटा सा 0.022 सेकंड में उसका हाथ हिला एंड यू गो टू द अदर लेन, सो मेनी पीपल किल्ड। निद्रा जीत बनना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में सोना चाहिए, नींद एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, कितना घंटे सोना चाहिए? नहीं, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ों की बात कर रहा हूं, बच्चों का सिलेबस बाद में देखेंगे। कितना घंटे सोना चाहिए? यस, गुड न्यूज सर, आपका आंसर राइट है, हम बड़ों को 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, बच्चे जो है ना जितना ज्यादा सोए उतना अच्छा है। इससे आप देखते छोटा बच्चा जन्म लेते साथ, राइट, 24 घंटे में 23 घंटा सोता है, एक घंटा उठेगा भोजन वोजन करेगा टाटा भाई वगैरह का फिर सोचेगा। जैसे जैसे हमारे शरीर का उम्र बढ़ता है ना, गुड न्यूज टू ऑल ऑफ यू, आपकी नींद कम होगी। एंड वेरी ब्यूटिफुल न्यूज इज इट्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ आवर्स दैट यू स्लीप, बट इट इज द क्वालिटी ऑफ आवर्स दैट यू स्लीप। कितना घंटे सो रहे महत्वपूर्ण नहीं है, सोते वक्त कितना आपकी वो क्वालिटी ऑफ नींद है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा इस टेक्निक के बारे में बताता हूं। ईसीजी इज अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अवर हार्ट वेव, ईईजी समथिंग विच मेजर्स अ ब्रेन वेव। तो अगर ब्रेन वेव को मेजर करेंगे ना, द फर्स्ट वन इज बीटा, अलर्ट, वर्किंग। आप में से कितनों को ये स्लीप मैनेजमेंट जानने की इच्छा है वो जरा हाथ उठाए, गुड। जिन्होंने भी हाथ उठाया मतलब आप जागृत हैं, आप बीटा लेवल पर है, अलर्ट है, अवेक है, ओके। अप्रोक्सीमेटली इसका जो साइकिल्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसी है 14-18 साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है, अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है अल्फा लेवल, आज मैं आपको मेडिटेशन में अल्फा लेवल पे लेके जाऊंगा, ठीक है। अल्फा लेवल एक ऐसी अवस्था होती है जहां पे आप सोए भी नहीं है तो जागे भी नहीं है, इट्स अ ट्रांजिशन स्टेज। और ये ट्रांजिशन स्टेज पर आना बहुत जरूरत है, क्योंकि इस ट्रांजिशन स्टेज पर दोस्तों हमारा जो मन होता है ना, एक छोटे बच्चे की मन की तरह होता है, जो कहा यस, जो कहा यस। और ये अवस्था पता कब आती है, अगर आपको लगता है कल से मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि आज बलराम भाई ने कहा भाई एक्सरसाइज करो, जहाज का ध्यान रखो, तो जैसे आप मुंबई दिल्ली गए और जैसे आपने 6 बजे अलार्म रखा और जैसे अलार्म बजता है तो आपके पुराने संस्कार उभर जाते हैं। टक 10 मिनट के लिए सोती हूँ, 10 मिनट के लिए सोती हूँ, और वो 10 मिनट आपको अति इंद्रिय आनंद की अवस्था देता है। यस और नो? एक ऐसी अवस्था जहां पर आप सोए भी नहीं है तो जागे भी नहीं। इट्स अ ट्रांजिशन स्टेज। इसे राज्यों का मेडिटेशन में जब बहने कहती है ना, पूरी आंखें बंद नहीं करो, आंखें थोड़ा खुली रखो, उसके पीछे कारण यह है, द साइकोलॉजिकल रीजन इज दिस, कि आप नींद में नहीं जाना चाहिए, आप सोए और जागृत के बीच में रहना चाहिए जहां पर आप एम्पावर हो सकते हो। राइट? थर्ड स्टेज इज थीटा स्टेज। मैं इस पर ज्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ऐसी स्टेज जहां पर बहुत गहरी नींद पर है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति टेलीविजन स्विच तो छोड़ो, अगर आपको भी लेकर जाएंगे ना, मुस्कुराते हुए जाएंगे, चलिए 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 चलिए। द फोर्थ स्टेज इज डेल्टा स्टेज, 1 to 2 cycles per second। एक ऐसी अवस्था जहां पर एकदम कम संकल्प, 1 to 2 cycles per second। डॉक्टर्स कहते हैं जब आप नींद कर रहे हो, अगर आपका मन 1 to 2 cycles delta में आ गया तो आपकी नींद क्वालिटी नींद है। दोस्तों आपने कहा 6 से 8 घंटा, बहुत प्यार से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 6 से 8 घंटा जो आपने कल रात को नींद किया, कितना समय आप लोग डेल्टा में गए होंगे? जस्ट गेस इट आउट। 2 hours। सर सुनकर इतना अच्छा लगता है, आपके बॉस तो यहां नहीं बैठे ना? हाँ बैठे रहेंगे ना, तो 24/7 एक महीने के लिए आपको जॉब में लगा देंगे सर। 2 घंटा डेल्टा स्लीप सुनकर बहुत अच्छा लगता है सर, और हो भी सकता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अच्छा बताइए हमारे जो बच्चे हैं मुंबई दिल्ली कोच्ची वाले बच्चे, वो जब सोते हैं वो कितना समय डेल्टा में जाते होंगे? जी सर 8 hours। अगली बार बच्चों को लेकर आना सर। अच्छा छोटू है, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। मैं मुंबई के एडोलेसेंट बच्चों पर देखा, बच्चे जो है ना, आपके बच्चे, आप 2 घंटा डेल्टा में जाते हो, आपके बच्चे जो है दे हार्डली इवन रीच द अल्फा लेवल। आने वाले समय पर हमारे बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी उनको, और नींद नहीं आएगी तो रेस्ट नहीं मिल रहा उनको, चार्जिंग नहीं हो रहा है। राइट? अब वैसे डेल्टा के लिए ना कोई बहुत बड़ा तपस्या करने की जरूरत नहीं दोस्त, आप सबने डेल्टा अनुभव किया होगा। जस्ट इमेजिन करिए आपके ना घर में कोई फंक्शन है, 1 महीने से लगे हुए हो, सारा फंक्शन खत्म हो जाता है, आप इतने थके होते हो, अगर ठप करके सोते हो तो पत्नी आकर आपको बुलाते हैं तो आप इतनी गहरी नींद, क्योंकि 1 महीने से आप लगे हुए थे। कुछ समय के बाद आपको वो पत्नी फिर बुलाती है, सुबह से कुछ खाया नहीं, आप फिर गहरी नींद पर, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो आती है, आप नींद पर तो लगता है थोड़ा बुला तो लूं, कुछ खा ले वो, तो जोर से उठाते हो, आप धीरे से अपना एक कान खोलते हो, उसको देखते हो और आपके मन में संकल्प चलते, इसको मैंने कहीं तो देखा है। वो बहुत प्यार से कहते हैं, हेलो जी, उठो जी, ये जी जी बोल रही है, मतलब ये कौन हो सकती है? ओहो आप मेरी पत्नी हो। धीरे धीरे मेमोरी फोल्डर्स अपलोड होता है। वो अवस्था अगर आप लेकर आए पाए अपने मन का, अब पता है प्रकृति ने आपको उस अवस्था पर लेकर आए, नहीं तो आपका स्ट्रोक हो जाता था, पैरालिटिक स्ट्रोक। आप कहेंगे प्रकृति को कैसे पता था कि भाई हमारा फंक्शन कौन सा दिन खत्म होने वाला है? कितना दिनों से आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ये प्रोग्राम इस दिन है, इस दिन है, इस दिन है, आपका शरीर ने और सिस्टम ने उसको कितनी अच्छी तरह से स्वीकार किया, अब प्रकृति ने उसका एक डिफॉल्ट अरेंजमेंट करके रखा। राइट? डेल्टा स्टेट। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर नींद ही सबसे बड़ा गिफ्ट है तो आपको हम सुबह सुबह 4 बजे क्यों उठाते भाई? सुबह सुबह उठाए 4 बजे और फिर यहां बिठाए और राजयोग मेडिटेशन सिखा रहे, वाई? क्यों? अगर नींद ही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट था रेस्ट रिलैक्सेशन रिजुवेनेशन का, तो आप लोग सुबह 4 बजे क्यों उठें? मैं क्यों उठूं भाई सुबह 4 बजे? सोने का भी टाइम होता नहीं भाई, किसने कहा? कोई संविधान में लिखा है क्या कि आप 4 बजे उठना चाहिए? नहीं, आप जितना समय, आपका अधिकार है बहन जी, आजकल तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ज्यादा अधिकार है, आप जितना समय से ये सो सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। नहीं, नींद कर रहे हैं ना, नींद कर रहे हैं तो अच्छे से सोते रहिए ना, जब तक आपको चाहिए 4 बजे आप अपनी नींद को उठ यू आर टेकिंग द चैलेंज, व्हाई यू आर डूइंग इट, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, अगर 6 बजे तक सोएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? नींद से आपको रेस्ट, रिलैक्सेशन, रिजुविनेशन मिलता है ना बहन जी? नहीं, वो ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत वेला, वो तो ठीक है। मैं 6 बजे की, बहुत सारे लोग 6 बजे उठते हैं, भाई क्यों उठे हम 6 बजे? नहीं, मैं 4, मैं आप लोग कहते मैं उठते 6 बजे क्यों उठे, 7 बजे क्यों उठे? सोते रहे ना, रेस्ट, रिलैक्सेशन, रिजुविनेशन, जब तक आपको शरीर चाहिए। बीच में क्यों उठे, क्यों वॉकिंग करें, क्यों बैठकर मेडिटेशन करें? चलो वॉकिंग तो अपने शरीर के हेल्थ के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, नींद से आपके शरीर को रेस्ट मिलता है, लेकिन नींद से हमारे संस्कार चेंज नहीं होते हैं। प्लीज मेक इट वेरी वेरी क्लियर। स्वामी भाई को बहुत गुस्सा आता है, जैसे ही मैं वो गुस्से में सोता हूं, शरीर और मन रेस्ट होता है, मैं उठता हूं तो इमीडिएटली गुस्सा नहीं आता है, लेकिन मेरे क्रोध के संस्कार चेंज नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपको संस्कार परिवर्तन करना है तो बैठकर निद्राजीत बनकर योग करना पड़ेगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज की बात नहीं, योग और योगा में अंतर है। तो इट्स अ टूल टू एम्पावर यू सो दैट यू कैन मैनेज ऑल द चैलेंजेस। ये बहुत बहुत जरूरत है, इसीलिए जागृत रहना। लोगों को नींद क्यों नहीं आती है? नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि जब वो कर्म करते हैं ना, तो कर्म करते वक्त बीटा प्लस में गुस्सा कर रहे हैं, ईगो है, इतना कॉन्फ्लिक्ट पर आ रहे हैं, इट इज बीटा डबल प्लस। आप सोएंगे तो इतना हमें डिस्टर्ब करेगा। बट इफ यू लर्न राजयोग मेडिटेशन, राइट, आप देखेंगे वो जो लोग होते ना, वो कर्म योगी बनते, कर्म करते हुए वेरी स्टेबल। यस आई नो देयर इज अ चैलेंज, बट कैन आई बी स्थित प्रज्ञ, वी वर्क ऑन टू आवर्स, और धीरे 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 रात को भी बहुत आराम से सो सकते हैं, बहुत आराम से नींद आती है। यू बिकम नॉट जस्ट अ योगी, यू बिकम अ कर्म योगी, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज राजयोग। द पावर टू मीट ऑल चैलेंजेस इज दिस राजयोग। राज मीन्स द सीक्रेट, और क्योंकि शिपिंग एविएशन SAT है, आई थॉट आई विल कॉइन वन वर्ड फॉर यू, इट इज राजयोग में 3 बात है, नंबर 1 इज सिट, नंबर 2 इज सेट, एंड नंबर 3 इज गेट। सिट, सेट, get the power, okay? When you speak about sit, बहुत बहुत जरूरत है आराम से बैठे, सभी सीधे बैठे, फिर से जागृत होकर बैठे, एकदम स्ट्रेट अलर्ट, और एक डायलॉग बोलते हो, सभी मेरे साथ बोलिए, है ना, बहुत प्यार से बोलना, सभी बोले चैलेंजेस आर वॉट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग एंड ओवरकमिंग देम मेक्स लाइफ मीनिंगफुल। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको ना 60 seconds, सभी सीधे बैठेंगे, 60 seconds, मैं स्टार्ट कहूंगा दोस्तों, और मैं कहूंगा ओके, 60 seconds, और ये 60 seconds में सबसे पहले अपने शरीर को स्टेबलाइज करना, बिल्कुल हिलना नहीं, एक पोजिशन पर आप फिक्स कर लीजिए, एंड इट्स ओनली फॉर 1 minute है, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट 1/2 hour or 1 hour, ओनली 1 minute। सुखासन पर बैठिए, आपको नीचे भी नहीं बिठा रहे, आप बहुत अच्छे कंफर्टेबल चेयर में बैठे हैं, आराम से बैठिए, एक पोजीशन को सेट कर लीजिए, 1 minute हिलना नहीं, बिल्कुल एकदम कंट्रोल ऑफ योर जहाज। आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द इंडियन एयरफोर्स, ग्रुप कैप्टन सचान मेरे साथ चल रहे थे, तो मैंने पूछा ये जो एयरफोर्स पायलट्स होते हैं ना, वो कितनी ऊंचाई पर अपने फाइटर जेट्स को चलाते हैं? ही सेड इट्स 50,000 feet। मैंने कहा मैं मुंबई से बैंगलोर आया तो मैं किस ऊंचाई पर उड़ा? बोला 35,000 feet, समटाइम्स मे बी 40। तो मैंने कहा अच्छा आप कितने स्पीड पर आप उड़ाते हो 50,000 feet पर? बोला इट्स मैक 1.5। मैंने कहा कन्वर्ट, प्लीज कन्वर्ट इट इन किलोमीटर्स पर आवर। बोला 1,800 kilometers per hour, 1,800 kilometers per hour। जस्ट इमेजिन करिए, मैन ओवर मशीन, कितना कंट्रोल। एंड गुड न्यूज, दीज डेज भारत में वी हैव गॉट 3 लेडी पायलट, फाइटर जेट पायलट। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेदर यूर अ मेल और अ फीमेल, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्रेनिंग, कितना वो कंट्रोल करते हैं, वो भाई हो या बहन हो। क्या हम 1 minute इसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? 1 minute, मैं कहूंगा स्टार्ट, और मैं कहूंगा ओके, वी हैव टू जस्ट स्टेबलाइज आवर फिजिकल कॉन्शियसनेस। ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, हियर वी स्टार्ट। relax. Yes, you are able to control. अब इस एक मिनट को ना आप दो मिनट लेकर जाइए, तीन मिनट लेकर जाइए, पांच मिनट लेकर जाइए, आप देखेंगे आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली वो स्टेबिलिटी आने लगेगी। हाँ, लेकिन यहां पे एक मिनट बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज सेट। सेट करो, किसको सेट करो? वी हैव टू सेट अवर माइंड। शरीर को एक जगह बिठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट राजयोग में अपने मन को सेट करना बहुत जरूरत है। अब यहां पर सारा खेल होता मन का। जब आप बैठ तो गए हो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूंगा इस एक मिनट में आप क्या कर रहे थे, स्वामी भाई क्या करना है? जब मैं 22 वर्ष पहले आया था तो मुझे पता ही नहीं था कि मन में मुझे करना क्या होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू रिलैक्स योरसेल्फ। शरीर जैसे रिलैक्स होगा तो मन की भी जो गति है ना, क्वांटिटी ऑफ थॉट, धीरे धीरे स्टेबलाइज होगी, 100% होगी। मन में विचार भी चलेंगे, स्टार्टिंग में विचार चलेंगे, लेकिन उस मन को थोड़ा सा स्टेबलाइज करो और एक बहुत सुंदर डायलॉग बोलो, महसूस करो। सभी मेरे साथ बोलिए, सभी बोलिए, बी स्ट्रांग इनफ टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, डोंट आस्क लाइफ व्हाई मी, इंस्टेड से ट्राई मी। ये चैलेंज क्यों आया, क्यों आया, क्यों, क्या, कैसे, कब, किस दलदल में नहीं जाओ। दलदल में हम जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उस परिस्थिति से युद्ध करने के बजाय पर हम अपने से युद्ध करते हैं। मेरे साथ क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, और फिर प्रॉब्लम नेक्स्ट स्टेज पर आ जाती है। अपने से युद्ध करते करते पता ही नहीं चलता है कब हम अपनों से युद्ध करने लगते हैं, अपनों से युद्ध करते हैं। वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द सिचुएशन, बट एक्चुअली वी आर फाइटिंग विद आवरसेल्फ एंड वी आर फाइटिंग विद अ लाउड नियर एंड डियर वन। उनके साथ युद्ध करें, प्रॉब्लम ऑफिस में है, वो सारा तनाव घर में लेकर आ रहे हैं। वेर इज द एम्पावरमेंट? इसे एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी आप बैठेंगे ना अपने मन को रिलैक्स करने के लिए एक डायलॉग जरूर बोलना। सभी बोलिए, जो हुआ, तो जोर से बोलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है माय गॉड, जो होगा। आप लोग तो सब लोग त्रिकालदर्शी बन गए, एब्सोल्युटली राइट। व्हाट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर समथिंग गुड। इट्स अ थ्योरी विच वी हैव बीन नोइंग राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। नाउ जस्ट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर इट, एक्सपीरियंस इट। मुझे याद आता है ऑन गॉडली सर्विस, आप लोग ऑन गवर्नमेंट सर्विस हो, वी पीपल आर ऑन गॉडली सर्विस। जैसे अगली बार जब आप भोजन करने जाएंगे ना, आपको जो भी वो भोजन परोस रहे ना, उनका चेहरा देखना, और वो सब लोग अपने परिवार अपने प्रोफेशन को छोड़कर ऑन गॉडली सर्विस, कितना पेमेंट मिलता होगा उनको? यस yes. नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं सर तो काम नहीं करेंगे। इतनी आपकी दुआएं मिलती है, द इनविजिबल इनकम, अदृश्य ऊर्जा और इतनी दुआएं। यहां पे जो भी काम होता है ना, सब ऑन गॉडली सर्विस, ईश्वरीय सेवा अर्थ। जितने भी सेवाधारी आए हैं सबने अपना टिकट बुक किया है, दे हैव कम हियर, दे विल स्पेंड 3-4 डेज हियर, आप आपकी सेवा करेंगे, बड़े खुशी से करेंगे और वापस आएंगे। मैं इसलिए आपको दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, रिटायरमेंट के बाद काफी बार लगता है मैं क्या करूं, बीच बीच में आते जाइए। और ये सजेशन मैंने अपने पापा को दिया रिटायरमेंट के बाद, मैंने कहा पापा घर में बैठे रहते हो अकेले, इधर आ जाओ, बीच बीच में सेवा करो। एंड माय पापा इज 82 इयर्स ऑफ एज, हेल्दी वेल्दी हैप्पी इन केरला, थैंक्स टू दिस टेक्निक ऑफ राजयोग मेडिटेशन। रिटायरमेंट के बाद मन अभी तो इतना बिजी है, रिटायरमेंट के बाद एक अचानक आप देखोगे मन खाली, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज आफ्टर रिटायरमेंट। जैसे बहने तो मैनेज कर लेंगे बच्चे और बच्चों के साथ, आपको बड़ा चैलेंज आएगा अपने आपको चेंज करने। मुझे याद आता है एक बार मैं गॉडली सर्विस, बहुत जगह हम लोग तनाव प्रबंधन के कैंपेन में जा रहे थे, तो हम लोग जब कैंपेन में जाते हैं ना तो हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आपको समय के हिसाब से स्टार्ट करना है, समय के हिसाब से एंड करना, जितना समय होगा उस हिसाब से तनाव प्रबंधन करना है। तो करते करते ना हम लोग एक सेंट्रल जेल में गए सेवा के लिए, तो वहां बहुत सारे कैदी भाई लोग बैठे थे। तो बीके कोऑर्डिनेटर जो था, मैंने उसको पूछा कितना समय है भाई जी, बोला स्वामीनाथन भाई वैसे ही प्रोग्राम डिले हो गया है, या नेक्स्ट सेशन इन इज इन अ कॉलेज, सारे बच्चे वहां बैठे हैं तो दूसरे फैकल्टी मैनेज करेंगे, क्योंकि आप आ गए हो, एक मिनट के अंदर तनाव प्रबंधन करो। तो एक मिनट में क्या करना है, तो मैंने इमीडिएटली गाड़ी ऑटो मोड में डाला, मैंने सभी भाइयों का बैठो, जब भी तनाव होता है ये डायलॉग बोलो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अचानक बीके भाई कहता हेलो, कहां ये डायलॉग बोल रहा है जेल के अंदर, जो हुआ अच्छा हुआ। तब तक तो मेरी गाड़ी रनवे छूट चुकी थी, मैंने इमीडिएटली ब्रेक लगाया, मैंने कहा मैं क्या करूं, बोला स्वामी भाई थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना, कौन सा डायलॉग कहां बोलते हो, सेंट्रल जेल में आए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आता उस चैलेंजिंग सिचुएशन को मैं फेस कैसे करूं। अचानक एक भाई वहां बैठे थे, उसने हाथ उठाकर कहा स्वामी भाई अब डायलॉग पूरा करो और स्टार्टिंग से बोलो। अब मैंने उस बीके भाई को कहा मैं क्या करूं, बोला अभी जेल से बाहर जाना तो डायलॉग बोलो अभी। अब मुझे भी लग रहा था कैसे, हाँ जो हुआ जेल के अंदर बैठे अच्छा हुआ, सब लोगों ने कहा जो हो रहा है अच्छा, मुझे भी कैसा लग रहा था, बोलने का भी मन नहीं कर रहा, हाँ ये शुभ भावना रखे कि भाई सब छूट जाए, तो मैंने कहा जो होगा अच्छा होगा। उस भाई ने कहा आपको ये डायलॉग बोलने में संकोच हो रहा था, मैंने कहा यस मुझे बहुत संकोच हो रहा था, बोला आई टेल यू माय एक्सपीरियंस, बोला स्वामीनाथन भाई बेसिकली आई एम अ बैंक मैनेजर, हमारा एक कमिटी था जिसने कुछ लोन वोन ओके किया, एंड सिंस आई वॉज अ बैंक मैनेजर आई हैड टू जस्ट साइन इट, मैंने साइन किया, आफ्टर सम टाइम देयर वाज एन विजिलेंस हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, और सारा जो टीम था इंक्लूडिंग मी जेल के अंदर, राइट जेल के अंदर आया तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा काम रिस्पॉन्सिबल जस्ट पुटिंग द सिग्नेचर ऑन अ कमिटी विच हैज अप्रूव्ड इट, राइट, और मुझे भी अंदर कर दिया, क्यों क्या कैसे इतना युद्ध करने लगे। एक दिन उनको जेल में अनाउंसमेंट हुआ कि ब्रह्मा कुमारी बहने रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए सबके पास आएंगे, तो आप लोग प्लीज उस दिन प्रोग्राम में आना। वो भाई कहते अनुभव कहते स्वामी भाई ये ब्रह्मा कुमारी बहने हर साल रक्षाबंधन में मेरे बैंक में आते थे, मैं एक साल भी उनको अंदर आने नहीं दिया, आज मैं अंदर हूं तो वही बहने रक्षाबंधन के दिन आ रहे हैं। बहनों ने आकर बहुत प्यार से राखी बांधा, सबको वरदान दिया, टोली दिया, फिर बहनों ने कहा कि बहन आपके पास आई है तो रिटर्न में कुछ दोगे, तो नेचुरली एक स्टैंडर्ड डायलॉग लोग कहते हैं कि हम लोग तो जेल के अंदर हम दे भी क्या पाए, तो बहनों ने कहा आपके पास समय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हफ्ते का टाइम दीजिए, हर दिन एक घंटा आप राजयोग सीखना। और इस बैंक मैनेजर ने कहा मैंने एक हफ्ता रिलीजियसली आई अटेंडेड दैट प्रोग्राम, और एक हफ्ते के बाद मेरे को जीवन का लक्ष्य पता चला कि आज कलयुग है, एक नया सवेरा सतयुग आएगा, श्री कृष्ण का जन्म फिर इस धरती पर होगा। फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं स्वामी भाई आप सतयुग में श्री कृष्ण के साथ आओगे या नहीं आओगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं श्री कृष्ण के साथ जरूर आऊंगा क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में दिखाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, एक्सेप्ट करो, डोंट फाइट, ये क्यों हुआ ये कैसे हुआ, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, जन्म जन्मांतर की कहानी है ये, बहुत सूक्ष्म कार्मिक अकाउंट है ये, और जिस दिन आपने उस कार्मिक अकाउंट को समझ लिया ना आप कभी किसी से नाराज हो ही नहीं सकते। नाराज, मुझे ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता है इस विद्यालय का, अगर राज को नहीं जाने ना तो नाराज होंगे, राज को जान लिया तो किसी से कोई नाराजगी नहीं। एक बार आई वाज टेकिंग अ फ्लाइट फ्रॉम रायपुर टू बॉम्बे, तो मैं वहां बहुत स्कूल्स में मुझे प्रोग्राम करना बहुत अच्छा लगता है, तो जैसे रायपुर में मैं चेक इन के लिए गया तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, दो तीन बच्चे थे, हेलो गुड आफ्टरनून सर, मैंने कहा गुड आफ्टरनून सर आप हमारे स्कूल में आए थे सर, यू टॉट अस मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन, कहा अच्छा कहां जा रहे हो, तो उसके पापा भी थे, तो बच्चों के पापा ने कहा सर ये लोग यहां पर हॉस्टल में पढ़ते हैं सर, तो अभी इनका दिवाली वेकेशन है, बहुत कम दिन वेकेशन मिला है तो हमने सोचा घर पर जाएं, तो फ्लाइट में जा रहे हैं, एंड द गर्ल्स आर सो एक्साइटेड टू टेक अ फ्लाइट, मैंने कहा पहली बार फ्लाइट में जा रहे हो, यस सर वेरी एक्साइटेड, उनको दिखाई देता विंडो सीट वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अच्छा फ्लाइट में हम बैठे, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुई ना तो इतनी फ्लाइट हलचल में, धप धप धप, फिर थोड़ा धप धप धप, बाप रे ऐसा लग रहा था कि दिल्ली बाहर आ रहा है, पता लग रहा कि लास्ट सेकंड हो सकता है, फिर थोड़ा हुआ, अब हम लोग क्लाउड्स देख रहे हैं, कोई क्लाउड भी नहीं, वेदर इज ऑल्सो ओके, फिर धप धप धप, मुझे याद आता है मेरे साइड पर एक लेडी बैठी थी, बार बार वो इमरजेंसी बजा रही, वो बेल रिंग, नेचुरली फ्लाइट टेक ऑफ के मोड में था, वन मिनट यूजुअली आप लोगों ने बहुत लोगों ने फ्लाइट चढ़ा होगा, विद इन 3-5 मिनट वी टेक ऑफ दैट क्रिटिकल हाइट एंड द क्रिटिकल वेलोसिटी वेयर आफ्टर दैट द फ्लाइट इज वेरी स्टेबलाइज, ये सभी अनुभव करते हैं, बस टेक ऑफ के समय पर थोड़ा सा चैलेंज होता है। अब वो मैंने बच्चियों को बताया भी था, मैंने धीरे से बच्चियों को देखा तो बेचारे इतना डर रहे हैं, विंडो सीट में बैठे बाप रे, और इतना जोर से वबल हो रहा फ्लाइट, थोड़ा किया फिर धप धप, फिर धप धप, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes तक ऐसा लग रहा था जैसे सबका सर फट रहा है. धीरे से फ्लाइट स्टेबलाइज हुई. जब फ्लाइट स्टेबलाइज हुई तो ये जो बहन जी साइड में बैठे तो बार बार वो इमरजेंसी बेल बजा रहे थे. वो एयर होस्टेस आई इतना भड़की, ये पायलट है कि स्टेट बस का ड्राइवर है, गाड़ी कैसे चलाता वो, इसका नट बोल्ट ठीक है क्या? तो लेडी वो नो मैडम इट्स ओके. व्हाट ओके यू आर टेलिंग मी मैडम, देयर कुड बी वेदर, व्हाट वेदर कंडीशंस, ओनली यस्टरडे लैंड अप इन रायपुर, बाहर आपको वेदर डब 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 फायरिंग. इट्स नॉ नेचुरली वी वर ऑल्सो वेरी टेरिफाइड एंड डर भी लग गया था. वी वर ऑल्सो वेरी क्यूरियस. तो सेकंड मैडम एवरीथिंग इज ओके. फिर धीरे से वो बहन जी पूछती है मुंबई में सुरक्षित उतारेगा ना ये, इसको बोलो राइट. तो थोड़ी देर के बाद ना वो पायलट का अनाउंसमेंट हुआ, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू ऑल ऑफ यू, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, बट आई टेल यू द रीजन कि एज सून एज वी टुक ऑफ, जैसे ही हमने टेक ऑफ किया तो इमीडिएटली वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द एटीसी कि देयर इज एन एयर एक्सरसाइज गोइंग अप. एयरफोर्स का एक एक्सरसाइज हो रहा था एंड वी वर एडवाइज टू कीप इट एट दिस पर्टिकुलर हाइट. माई डियर पैसेंजर्स यू वेर विद इन ग्रेविटी एंड वी कुड नॉट मूव अप बिकॉज वी डिड नॉट हैव द परमिशन, इसलिए आपको ग्रेविटी का प्रेशर आ रहा था, थ्रस्ट और एनी टोल्ड अ कपल ऑफ टेक्निकल वर्ड, बट नथिंग टू वरी, वी आर एब्सोल्युटली सेफ. और फिर मुस्कुराते हुए का हैव अ सेफ फ्लाइट एंड आई गारंटी यू दैट वी विल ऑल लैंड वेरी सेफली इन मुंबई. सभी ने बहुत प्यार से प्रणायाम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा उस पायलट ने ये जवाब दिया. नहीं अगर दिया होता ना, ये दो बच्चे जिंदगी भर कभी फ्लाइट में चढ़ते नहीं थे. बट वहां बैठकर मैंने महसूस किया सेटिंग करना बहुत जरूरत है. जब आप योग में बैठते हो ना, बहुत सारे थॉट्स चलते हैं. अगर इस थॉट्स के साथ आप युद्ध करते रहोगे ना, आप थक जाओगे. यू विल बिकम एब्सोल्युटली पावरलेस. आई वॉज डूइंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द कोस्ट गार्ड. तो मैंने वो कमांडेंट से पूछा आपको सबसे बड़ा चैलेंज कब आता है. बोला सर जब बहुत आंधी तूफान आता है. तो मैंने कहा आंधी तूफान आता है तो आप क्या करते हो. बोला सर आंधी तूफान आता है एक ही जगह सुरक्षित होता है, द आई ऑफ द स्टॉर्म इज ऑलवेज पीसफुल. द आई ऑफ द स्टॉर्म इज ऑलवेज पीसफुल. बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, उस थॉट्स को आप ऑब्जर्व करो. लेकिन एक ऐसा करो कि इस थॉट से मुझे ऊपर उठना है. और ये थर्ड स्टेप है विच इज कॉल्ड एज राइट सिट सेट एंड गेट. आइंस्टीन बहुत बुद्धिशाली थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई. उन्होंने कहा आप सभी मेरे साथ रीड कर सकते हैं, सभी बोलिए नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट. यस. तो हर दिन सुबह उठना, अपना चेहरा दर्पण में देखना, ये मुस्कुराता हुआ चमकता हुआ सितारा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और सभी कहना आई. तो जोर से बोलो, नहीं डराओ नहीं ना, थोड़ा डरा देते हो आप, थोड़ा प्यार से बोलिए आई, और प्यार भरिए आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. अब एक मिनट सीधे बैठेंगे, सीधे बैठे. अब विल डू हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर को जोड़ेंगे. क्या करना है पता है आपको, शरीर को बहुत स्टेबल कर, ओनली फॉर 60 सेकेंड्स. इस 60 सेकेंड्स में आपके मन जो भी संकल्प कर रहे हो उसे युद्ध नहीं करो, बस साक्षी होकर जो संकल्प चल रहे, बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, बी अवेयर. और जब वो देखते हो ना वो संकल्प आ रहे हैं मेरे पास, अवेयर करो कि संकल्प आ रहे हैं. अगर हो सके तो महसूस करो आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऑब्जर्विंग दिस थॉट्स. और थॉट्स जाएगा. अगला एक मिनट, ठीक है. तो हम लोग विचारों को खत्म करना, विचारों को बंद करना कुछ नहीं बोल रहे हैं. हम ये कह रहे हैं जस्ट कीप ऑन वॉचिंग योर थॉट्स. बस देखते रहो कौन से संकल्प चल रहे. जब आप उस संकल्प को देखने लगते हो ना, तो आपकी अवस्था इस ऊंची अवस्था होने लगती है. आप विचारों के कंट्रोल में आने लगते हैं. और धीरे धीरे कुछ समय के बाद पता क्या होगा, आपका मन आपका बहुत प्यारा दोस्त बन जाएगा. और धीरे से आप उठ पाएंगे. ग्रेविटी के अंदर है. लोग ऐसे बोलते, लोग ऐसे करते, बॉस ऐसे हैं, इन लॉस ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, फ्रेंड ऐसी है, सब चलता रहेगा. लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब धीरे से इन विचारों से आप उठ पाएंगे. इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस एंड द प्रैक्टिस हैज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे मॉर्निंग 6:30. इस प्रैक्टिस को हम धीरे धीरे हर सत्र में कंटिन्यू करेंगे. ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू. कौन कौन नहीं सोएगा वो हाथ उठाएं. यहाँ पे सोने की बहुत चांसेस है. कुछ लोग मैं पूछता हूँ कैसा था योग, स्वामी भाई बहुत अच्छा योग. फिर मैं पूछता हूँ वो राजयोग था कि निद्रा योग था. यस. अब मैं आपको स्लीप मैनेजमेंट का टेक्निक बताता हूँ. आप जो कर रहे हो ना, 6 घंटे की नींद की जरूरत है. छोटा सा टाइम, 1 घंटा सो रहे हो, 2 घंटा सो रहे हो, डेल्टा में अगर आ गए आप देखेंगे आपकी नींद ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी और आपको ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा. सपोज आपको फ्लाइट टेक ऑफ करनी है, बस फ्लाइट टेक ऑफ करने के बोले यू कैन टेक अ पावर नैप. कॉन्शियसली अपने आपको डेल्टा में लेकर जा सकते हो. उसका अभ्यास अभी हम धीरे धीरे करेंगे और लास्ट में उसको उसी तरीके से वाइंड अप करेंगे. ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू. 60 सेकेंड्स, आंखें पूरी बंद नहीं करेंगे, थोड़ा सा खुली होकर, किसी को देखना भी नहीं है, लेकिन यू आर अवेयर एंड जागृत अवस्था. हियर वी स्टार्ट. ओके, ओम शांति. जिन्होंने एक्सरसाइज किया वो हाथ उठाए, गुड. मतलब आप जागृत तो हैं, वेरी नाइस. आप क्या करना है पता है, नेक्स्ट टाइम जब आप कर रहे हो ना, तो जो जो थॉट्स आए ना, कितने क्वांटिटी ऑफ थॉट्स हैं उसको देखना. और आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आज 10 आए, फिर धीरे धीरे 8 होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, एकदम कम. एंड द लास्ट बिफोर आई वाइंड अप इज sit, set and get. That's a very wonderful slogan. आप कुछ समय के बाद एक लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे, राइट. एक बहुत सुंदर स्लोगन है, सभी बोलिए, वी मस्ट लेट गो ऑफ द लाइफ विच वी हैव प्लान्ड सो एज टू एक्सेप्ट द वन दैट इज वेटिंग फॉर अस. इस जीवन रूपी यात्रा में जैसे जैसे दरवाजे खुलते रहते हैं, सीन आते रहते ना, आपने बहुत कुछ चीज प्लानिंग किया, लेकिन वो प्लानिंग के हिसाब से भी नहीं हुआ ना, बेचैन नहीं हुई है. नेक्स्ट क्या वो क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है उसको देखकर आनंद में आइए. ये बहुत बहुत जरूरत है. और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो अपने संस्कार परिवर्तन के लिए है, एंड दैट इज डिटैचिंग योरसेल्फ. अगर मैं आपसे पूछूंगा आप कौन है, तो आप सभी ने देखा है कि यस, यू आर ए वेरी वेरी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. भारत में 23 IITs हैं, उस 23 IITs में वन ऑफ द लेटेस्ट IITs IIT गांधीनगर. आपको बहुत जानकारी बहुत अच्छा लगेगा. IIT गांधीनगर हैज बिकम द फर्स्ट IIT दैट हैज स्टार्टेड अ फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट ऑन कॉग्निटिव साइंसेस. जो मन के बारे में जो आप सीख रहे हैं ना, आजकल IIT के सिलेबस में आ गया है. और आज मैं बताता हूं कि नींद में क्या होता है और मेडिटेशन में क्या होता है, जिसके कारण आप अपने संस्कार को चेंज कर सकते हो. और क्या गेट करना है, हम वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. कैन आई वी हैव द ऑडियो प्लीज.
कॉल्ड द फैब्रिक ऑफ द कॉस्मोस, व्हाट इज स्पेस. इट वाज होस्टेड बाय ब्रायन ग्रीन, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हु रोट द बुक कॉल्ड द फैब्रिक ऑफ द कॉस्मोस. हियर इज अ 5-मिनट वीडियो क्लिप फ्रॉम दैट प्रोग्राम.
As we examine the fabric of the cosmos ever more closely, we may well find far more surprises than anyone ever imagined. Take me, for example. I seem real enough.
So कह रहे हैं ये शरीर जो है ना, ये real लगता है मुझे.
Well,
लेकिन क्या वो real है?
But surprising new clues are emerging that everything, you and I and even space itself, may actually be kind of hologram. That is, everything we see and experience, everything we call our familiar three-dimensional reality, may be a projection of information that's stored on a thin, distant, two-dimensional surface.
देखिए, जो भी challenges हमारे जीवन में आते हैं ना, it's actually not a skill problem, it is never a technical problem. It is always an emotional problem. राइट. और ये जो व्यक्ति जिस तरह से बिहेव करता है ना, हमको लगता है कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों बिहेव करता है. इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर, राइट. जैसे आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है ना, आप स्वाइप करते हो, तो मशीन जो होता है इज नॉट कंसर्न विद योर रंग रूप ऑफ योर डेबिट क्रेडिट कार्ड, वो उसका बारकोड को देखता है. इसी तरह मैं कौन हूं, मैं वो आत्मा हूं और मेरे चारों तरफ का एक आभा मंडल है जिसको हम लोग एनर्जी फील्ड कहते हैं. वी कॉल इट एज अ पावर फील्ड. यह हमारे सारे इमोशंस हैं और इस सॉफ्टवेयर के अनुसार ये व्यक्ति काम करता है. अगर मुझे गुस्सा आ रहा है और उसका रिफ्लेक्शन यहां हो रहा है, जब तक आपके मन को इस लेवल पर आप लेकर चेंज नहीं करेंगे, ये संस्कार चेंज नहीं होंगे, कितना भी हम सत्संग करें और कराते रहे. इसे मेडिटेशन में जब हम धीरे से आपको रिलैक्स करते हैं ना, तो आपका मन इस अल्फा लेवल पर आता है और यहां पर आप प्रोग्राम करते हो, मैं बहुत शांत स्वरूप हूं, मैं बहुत प्रेम स्वरूप हूं, मैं बहुत शक्ति स्वरूप हूं. तो यहां पर प्रोग्रामिंग होता है, यहां प्रोग्रामिंग होता है तो आपका हार्डवेयर में चेंजेस दिखाई देते हैं. इसे गेट मतलब क्या है, हम शरीर में रहकर, उस शरीर के कॉन्शियसनेस में रहकर हम कितना भी मंत्र जपते रहे, अवर सॉफ्टवेयर इज नॉट गोइंग टू चेंज. मंत्र कहां जपना है, महसूस करना है मैं कौन हूं, जब आप अपने आप को इस स्टेज पर लेकर आते हो. इसे हमारा राजयोग मेडिटेशन में इनिशियली कुछ कमेंट्री दिखाया जाता है, बताया जाता है, कुछ गीत बजाए जाते हैं, बट दैट इज ऑल्सो जस्ट एन एड. द रियल मेडिटेशन इज बस एक साइलेंट म्यूजिक. और साइलेंट म्यूजिक आपको फटाफट ई अल्फा लेवल पर ले आता है. उस समय पर आपको प्रोग्रामिंग करेंगे, तभी आप एम्पावर होंगे. कितनी बार हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन पास करते हैं, ये मैं नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा. एक बार मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या नहीं पीना चाहिए, ऑप्शंस. एक ने खड़े होकर कहा, सर कूल ड्रिंक नहीं पीना चाहिए. दूसरे ने खड़े होकर कहा, सर शराब भी नहीं पीना चाहिए सर. मैंने कहा, और बताओ. एक बच्ची बता खड़े कर गए, सर पॉइजन भी नहीं पीना चाहिए. मैंने कहा, ऐसे बोल रहे जैसे चाय और कॉफी नहीं पीना चाहिए बोलते, राइट. बच्चों को पता है क्या सही है क्या. एक छोटी बच्ची साइड में बैठी थी, वो हाथ खड़ा करती है, मैंने कोल्ड ड्रिंक हो गया, शराब हो गया, पॉइजन हो गया, अभी क्या बाकी है. मैंने कहा, बोलो बोलो बच्ची क्या नहीं पीना चाहिए. नहीं नहीं अंकल हमें जो शर्म आती है. मैंने कहा ठीक है मैं तेरे पास आता हूं. मैंने कहा बताओ. तो धीरे से मेरे कान में कहती है, स्वामी अंकल सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए. वो छोटी सी बच्ची को पता है जीवन में क्या नहीं करना चाहिए. आपको और हमको नहीं पता क्या, लेकिन यू हैव टू हैव द पावर टू मूव ऑन दैट पाथ ऑफ राइटियसनेस. शक्ति चाहिए और शक्ति तभी मिलेगी जब हमारा वो सॉफ्टवेयर चेंज नहीं होता है. मोटिवेशनल लेक्चर सुन रहे हैं, यूट्यूब सुन रहे हैं, व्हाट्सएप में इतने मैसेजेस आते हैं, हर दिन गुड मॉर्निंग आता है, हर दिन मैसेज आता है, क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है. क्योंकि जब तक आप उस साइलेंस में नहीं जाते हो. मैं आपको अपना एक लास्ट अनुभव बताकर हम एक मेडिटेशन करके कंप्लीट करेंगे. मुझे याद आता, आई वॉज डूइंग अ सेशन फॉर द केरला पुलिस अकेडमी. तो वहां के मैं कमांडेंट के पास गया था, एक दिन बैठा था, तो उसने कहा, सर हमारे यहाँ जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स आते हैं उनका हम ये ट्रेनिंग कराते हैं, पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है. और बोलते बोलते बोल लिया, स्वामीनाथन इनको स्विमिंग भी इतना समय में कंप्लीट करना पड़ता है. मैंने कहा, अच्छा आप इनको स्विमिंग सिखाते. बोला, यस. मैंने कहा, सर आपके कैंप में स्विमिंग पूल है. बोला, सर बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है, क्यों पूछ रहे हो. मैंने कहा, सर दिल की बात कहूं, मुझे बचपन से ना तैरने की बहुत इच्छा थी लेकिन आज तक स्विमिंग सीख नहीं पाया, आप सिखा देंगे. सर इट वुड बी अ ग्रेट ऑनर. फटाफट फोन किया, एक ऑफिसर आए, सलूट वलूट किया, बोला आप इनको जानते हो. बोला, यस ये तो हमारे स्वामीनाथन सर हैं, 3 साल पहले तनाव प्रबंधन राजयोग हमको सेशन कराया था. बोला, हाँ स्वामी सर इस साल भी आ रहे हैं, इनको ना स्विमिंग सीखने की बहुत इच्छा है, तो आप तो स्विमिंग पूल के इंचार्ज, इनको सिखा देंगे. सर जरूर सिखाएंगे. तो कमांडेंट ने कहा, आप इनके साथ चलो, ये आपको बता देंगे. तो मैं उनके साथ चल रहा था, मैंने धीरे से पूछा उसको, सर कितना समय में हम तैरना सीख सकते हैं. बोला, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो. मैंने कहा, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है इसलिए मैं पूछ रहा हूं. बोला, सर कुछ लोग एक हफ्ते में सीखते, कुछ लोग एक महीना भी लग जाता है. आप एक हफ्ते हो ना, सुबह शाम करो, देखते हैं फिर. मैंने कहा, आज शाम को आ जाओ. बोला, यस आ जाओ. शाम को जैसे ही मैं पहुंचा तो एकदम स्विमिंग पूल में एकदम उसका सलूट किया. मैं कहा, सलूट अलूट नहीं करो, आप तो हमारे स्विमिंग के गुरु जी हो, आपको मुझे सलूट करना चाहिए. ठीक है स्वामीनाथन सर, मोस्ट वेलकम टू लर्न स्विमिंग. मैंने कहा, सिखाइए. तो बड़े प्यार से मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वो स्विमिंग पूल है. मैंने कहा, दिखाई दे रहा है. बोला, वो सीढ़ी है. मैंने कहा, दिखाई दे रहा है. बोला, वो रॉड दिख रहा है. मैंने कहा, यस. बोला, देखो स्विमिंग के लिए धीरे से ये सीढ़ी उतरो, वो रॉड को पकड़ो, शरीर को हल्का करो, छोड़ दो. मैं क्या. बोला, सीढ़ी से उतरो, रॉड को पकड़ो, शरीर को हल्का करो, छोड़ दो, अभी उतरो. मैंने कहा, बाप रे. हमें धीरे धीरे सीढ़ी उतरने लगा. अब पानी तो पानी होता है राइट. अब मुझे इतना डर लगने लगा, मैंने ऊपर देखा तो खड़ा था. मैंने कहा मुझे कुछ हो गया तो, नहीं नहीं मैं हूं, आप करो करो करो. मैं वो रॉड को पकड़ा और जैसे ही छोड़ा तो इतना पानी में मैं पानी पीने लगा. वो ऑफिसर उतरा, एकदम खड़ा कर दिया और चिल्लाने लगा, तुमको समझ में नहीं आता क्या? मैं बता रहा था शरीर को हल्का करो. मैं कहा इतना चिल्लाते क्यों? अरे क्या चिल्लाते, नहीं कि मंसला मिल रहा. अब उनका गुस्सा आता ना तो अपना मदर टंग चालू हो जाता है, नहीं कि उनको मंसला मिला. इतने समय यहां पर कब से मैं बोल रहा हूं? मैं कहा थोड़ा प्यार से बोलो ना. नहीं नहीं. मैं कहा अच्छा अब क्या करना? अरे मैंने बताया ना, रॉड को पकड़ो, शरीर को हल्का करो, छोड़ दो. मैंने कहा मैं कहां फंस गया, नीचे इतना पानी है, ऊपर वो पुलिस वाला. अब मैंने रॉड पकड़ा, धीरे से छोड़ा, फिर पानी, इतना पानी, फिर उठा, फिर मलयालम में चिल्लाने लगा. इतने समय पर मंसले सर प्लीज. अरे क्या तुमको समझ में नहीं आता क्या? 3 साल पहले तुम्हें तो आकर राजयोग सिखाया था, शरीर को हल्का करो, छोड़ दो. मैंने कहा पुलिस वालों की मेमोरी बड़ी शार्प होती है. जैसे उसने ये बोला ना तो मुझे थोड़ा एनर्जी आया. मैं कहा सर मैंने डायलॉग बोला जरूर था, लेकिन आप लोग कुर्सी में बैठे थे सर, और जब मैं आपको राजयोग करा था सब लोग सो रहे थे सर. आपको याद होगा सारे के सारे लोग सामने बैठे, तू भी बैठा था सामने. और मैंने कितना प्यार से आपको बोला था सर, कोई पानी में से करते क्या? हाँ हाँ ठीक है ठीक है स्वामीनाथन. हाँ हाँ एक काम करो, बच्चे इधर आओ. तो कुछ बच्चे ना बेबी पूल में खेल रहे, इधर आ रहे. ये हमारे स्वामी अंकल है, मेमोरी वेमोरी कराते हैं सर, इनको थोड़ा करा देना. मैंने कहा यस. हाँ बच्चे जरा बताओ कैसे स्विमिंग. सॉरी बच्चे टिक टिक कूद रहे और एकदम बेटे रहे. बोला सर दिस इज स्विमिंग, हाथ पैर मारना ना आप अपने तालाब में सीखना, लेकिन अगर आप पुलिस फोर्स में वो कमांडो ट्रेनिंग ले रहे हो तो हाथ पैर नहीं मारना, जितना आप स्टेबल लेटे रहोगे. क्योंकि अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है सामने, पूरा रात आप पानी में हो, अगर हलचल करोगे तो उनको पता चल जाएगा. यू हैव टू बी एब्सोल्युटली स्टेबल. इस तरह स्विमिंग सीखते हैं. अच्छा स्विमिंग ऐसा सीखा जाता है? बोला क्यों, आपने क्या समझा था? मैंने तो ऐसा समझा था टायर होगा, ट्यूब होगा, हम थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे. बोले नहीं हमारे यहां ऐसे ही होता है, अभी फिर से करो. अब मैंने कहा मैं क्या करूं. मैंने अपने शरीर को हल्का किया और मन को कमांड किया. अब मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई जो परमात्मा इस विद्यालय में कहते हैं, छोड़ो तो छूटो. मैंने उस रॉड को पकड़ा, शरीर को हल्का किया, मन को भी एकदम रिलैक्स, और धीरे से मैंने रॉड को छोड़ा. 3 सेकंड छोड़ा हुआ, टिक 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 मैंने रॉड को पकड़ लिया और अपना सर नीचे रखा. मैंने कहा पुलिस वाला भड़क नहीं रहा, चला गया क्या? थोड़ा देर टाइम सर नीचे रखा रहा, कुछ बोलता नहीं है. मैंने कहा गया शायद. धीरे से मैंने सर ऊपर उठा के देखा तो केरला पुलिस वाला एकदम, सर आपने स्विमिंग सीख लिया सर. मैं क्या, मैंने तो कोई स्विमिंग किया नहीं. बोला सर वो जो 3 सेकंड आप जो पानी से डिटैच हुए ना और पानी में जो फ्लोट किए ना, दैट इज स्विमिंग. 3 सेकंड का धीरे से 5 सेकंड करो, 10 सेकंड करो, 15 सेकंड करो, वो पानी जो है ना आपको मदद करेगा स्विम करने के लिए. अब जब हम मेडिटेशन करेंगे ना अगले 3 दिन में, अगर आप प्रयास कर सकते हो अगले 3 दिन में 3 सेकंड अगर आप अपने शरीर से डिटैच हो सकते हो, आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर डिटैच अगर हो पा रही है ओनली फॉर 3 सेकंड्स, आप देखेंगे आप इतने चार्ज्ड और इतने एम्पावर्ड. आई टेक यू टू द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, बट बिफोर आई टेक, एंड दैट इज वॉट इज एक्चुअली योग. राज हम लोग ने समझ लिया, योग किसको कहते हैं? योग अर्थात संबंध जोड़ना. इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, इट्स ऑल अबाउट संबंध, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स ऑल अबाउट स्मृति, याद एंड मेमोरी. एंड बिफोर आई टेक यू टू राजयोग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजिंग इंजीनियरिंग फीट इन द होल वर्ल्ड, वन ऑफ द इंजीनियरिंग फीट इज अ ब्रिज. एंड ये ब्रिज जो है ये अमेरिका में है. इस ब्रिज का नाम है द ब्रुकलिन ब्रिज. और ये ब्रिज बनाया गया था, शुरू हुआ था 1857 में. एंड इट जॉइंट्स न्यूयॉर्क एंड मैनहट्टन. और रिवर जो था वो इट इज कॉल्ड एज एन ईस्ट रिवर. इट्स एन इंजीनियरिंग वंडर ऑफ द वर्ल्ड. क्या ये इंजीनियरिंग वंडर है, मैं 1 मिनट में बोलकर हम लोग राजयोग पर जाएंगे, क्योंकि हम लोग सभी लोग शिपिंग, एविएशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं. इट इज द फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज विच इज मेड अप ऑफ स्टील. इसके पहले भी सस्पेंशन ब्रिज बने थे, लेकिन वो जो ब्रिज बने थे ना इट वॉज मेड अप ऑफ आयरन. लेकिन ये जो ईस्ट रिवर में जो बना रहे थे, एक तो उसका स्पैन बहुत ज्यादा था, और ये ईस्ट रिवर था ना बहुत टर्बुलेंट था, बहुत टाइड्स थे, और यहां बहुत सारे छोटे छोटे शिप्स क्रॉस करते थे। 1857 की बात कर रहा हूं मैं। इसके जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर थे उनका नाम था जॉन रूबलिंग। जॉन रूबलिंग जब ये इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, बहुत लोगों ने इसको अपोज किया, ये ब्रिज बिल्कुल बन नहीं सकता। जॉन रूबलिंग ने ट्राई किया एंड उसके बाद कुछ समय के बाद जब वो एक बार एक साइट को इंस्पेक्शन कर रहे थे, पानी के नीचे उतरे थे, ही गॉट उसको एक एक्सीडेंट हुआ एंड ही गॉट किल्ड। उसका जो बेटा था, हिज नेम वॉज वॉशिंगटन रूबलिंग, ही वॉज ऑल्सो एन इंजीनियर वर्किंग इन दैट प्रोजेक्ट। उसको एक इच्छा हुई कि मैं अपने पापा के सपने को पूरा करूं। ही टुक अप दैट प्रोजेक्ट जहां कोई लोग इंतजार नहीं कर रहे थे। यहां तक की कहानी तो बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके आगे चैलेंज शुरू होता है। चैलेंज यह हुआ था, वॉशिंगटन रूबलिंग का भी एक्सीडेंट हुआ, उसकी भी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि वो इतना वो गड्ढे के अंदर उतरते थे, वहां बहुत सारे मॉस्किटो स्वाम, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, उसके कारण उसको भी वो हुआ एंड ही गॉट अ पैरालिटिक स्ट्रोक। वो लेट गए थे, सभी लोगों ने बहुत प्यार से उसका हंसी मजाक उड़ाया, हम पहले से कहते थे ये नहीं बनेगा, राइट? फिर भी ये ब्रिज बना। कैसे बना पता है? दैट इज वॉट इज योग, दैट इज वॉट इज कम्युनिकेशन। इसकी जो पत्नी थी, राइट, वॉशिंगटन रूबलिंग, उसका नाम था एमिली रूबलिंग, वो उनके पास आकर बैठी, शी वॉज लाइक अ नर्स टू हिम। फिर अचानक एक दिन एमिली ने देखा कि उसका जो पति है वॉशिंगटन रूबलिंग, वो अपना इस इंडेक्स फिंगर को हिला पा रहा है, तो मतलब वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो एमिली के शोल्डर में टैप करता था, और धीरे से जब टैप करता था, धीरे धीरे वॉशिंगटन रूबलिंग और एमिली रूबलिंग ने एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन किया, और धीरे धीरे सारा वो बताने लगा एमिली को, और धीरे धीरे वो पूरा का पूरा ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ। आप गूगल में जरूर सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया में सर्च कर सकते हैं। मुझे एक सबसे अच्छा जो वीडियो लगा, विच यू कैन गेट कन्विंस्ड, मैंने सोचा वो वीडियो दो मिनट के लिए आपको जरूर दिखाता हूं, और मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारा कम्युनिकेशन हमें बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत साइलेंस में सबसे ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टील सस्पेंशन ब्रिज ऑफ द होल वर्ल्ड। लेट्स वॉच दिस वीडियो फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स।
में देखा होगा लाइक कनौज सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है, बल्कि ये एक खास वजह से भी फेमस है, और वो है इसके कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ट्रू इंस्पायरिंग स्टोरी, जिसको जान के आप भी काफी इंस्पायर होंगे। जॉन ऑगस्टस रॉबलिंग, जो कि क्रिएटिव सिविल इंजीनियर थे, उनको 1869 में एक आइडिया आया सस्पेंशन ब्रिज बनाने का।
ये सब हमने सुना है, अब आगे देख लेना।
वैसे भी
बहुत लोगों ने कहा इट्स इम्पॉसिबल
उस काम को करने में, तब कमिंग सिविल इंजीनियर
का बेटा था वॉशिंगटन
के बाद फाइनली जॉन रॉबलिंग अपने बेटे को कन्विंस कर सका इस प्रोजेक्ट के लिए। अब वो भी मानता था कि ये ब्रिज बनाई जा सकती है। दोनों ने मिलकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करा और एक फुल एक्साइटमेंट के साथ लग गए काम पे। 3 जनवरी 1870 वो दिन जब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। काम काफी अच्छा चल रहा था कि कुछ ही महीनों के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पे जॉन को एक मेजर इंजरी आई, और बाद में उस इंजरी के इन्फेक्शन से उनकी डेथ हो गई। अब वॉशिंगटन रॉबलिंग ब्रिज के इंचार्ज थे। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि वॉशिंगटन भी पैरालाइज हो गए। अब वॉशिंगटन ना तो टहल सकते थे, ना ही बात कर सकते थे, और ना ही उनकी कोई बॉडी पार्ट ढंग से मूव करती थी। बैक टू बैक ऐसे इंसिडेंट से ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। उधर क्रिटिक्स तो इसी इंतजार में बैठे थे, मैंने कहा था ये इम्पॉसिबल है। हर किसी का यही कहना था कि ये प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया जाए। अब एक वॉशिंगटन ही थे जो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते थे, और पैरालाइज कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं लग रहा था। लेकिन जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्रों पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। इस हैंडीकैप सिचुएशन में भी वॉशिंगटन के अंदर वो बर्निंग डिजायर थी ब्रिज को पूरा करने की और अपने फादर के विजन को सच साबित करने की। अपने सपने को पूरा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें भुला देना और भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और ये प्रोजेक्ट उनको करने को कहा। हर कोई मुकर गया। वॉशिंगटन के अंदर वो बर्निंग डिजायर जरूर थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन वॉशिंगटन हॉस्पिटल में बेड पे लेटा था और विंडो से सनलाइट आ रही थी, तभी एक हवा चली और विंडो पे लगे पर्दे वहां से हट गए। तब उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए पेड़ और खुला हुआ आसमान दिखा। ये सब उनके लिए एक मैसेज जैसा था, नेवर गिव अप। वॉशिंगटन रॉबलिंग और उसकी वाइफ एमिली वॉरेन रॉबलिंग ने मिलकर एक कोड ऑफ कम्युनिकेशन तैयार करा। वॉशिंगटन अपनी उंगली को हिलाता, एमिली के कंधे को अपनी उंगली से टच करता और इंजीनियर्स को बुलाता, और उसी कोड ऑफ कम्युनिकेशन से इंजीनियर्स को इंस्ट्रक्शन भी देता। शुरू में सबको लगा कि वॉशिंगटन बेवकूफ है, उसका इंस्ट्रक्शन इमली सही से इंटरप्रिटेट नहीं कर रही, लेकिन वॉशिंगटन के गाइडेंस पे इमली ने कैलकुलेशन ऑफ कैटरनी कर्व, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ब्रिज स्पेसिफिकेशन, केबल कंस्ट्रक्शन स्टडी करा। उस वक्त इमली एक नर्स और कंपेनियन जैसी थी वॉशिंगटन के लिए, साथ ही साथ चीफ इंजीनियर के ज्यादातर काम वो खुद ही करती, लाइक सुपरविजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन सब के बावजूद ज्यादातर हिस्टोरिकल बुक्स एमडी के कॉन्ट्रीब्यूशन को अंडर एस्टिमेट करती रही, शायद वर्ल्ड डोमिनेंट सोसाइटी की वजह से, और ब्रुकलिन ब्रिज का क्रेडिट सिर्फ जॉन और वॉशिंगटन को देती। लाइफ में अगर गोल बड़ा हो तो स्ट्रगल भी बड़ा ही करना पड़ता है। एमडी ने लगातार 11 सालों तक वॉशिंगटन को असिस्ट करा और ब्रिज का सुपरविजन भी। हर सफल व्यक्ति का एक दर्दनाक कहानी होता है और हर दर्दनाक कहानी का एक सफल अंत। फाइनली 24 मई 1883 को ब्रिज बनके तैयार हुई। उस दिन लगभग 1800 गाड़ियां और 1.5 लाख लोग ब्रिज को क्रॉस करे। एमली पहली थी ब्रिज को क्रॉस करने वाली। ये ब्रिज 486.3 मीटर लंबी बनाई गई दुनिया।
जोर से स्क्रीन के लिए जरा जोर से तालियां बजाइए। जस्ट इमेजिन करिए वॉशिंगटन रूबलिंग, उसकी वाइफ एमली। बस कम्युनिकेशन क्या था, द मूवमेंट ऑफ द फिंगर एंड द किनेस्थेटिक पावर। और क्या क्या इंजीनियरिंग एमली ने सीखा, उस सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, और आज से करीब 130 वर्ष पहले की कहानी है। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं, हमारे भाव से, हमारे भावनाओं से। सोचने की बात यह है दोस्तों कि अगर वॉशिंगटन को इतनी इच्छा थी कि मैं अपने पापा के सपने को पूरा करूं, तो आज हम सभी ये महसूस करें कि हम सभी जो बच्चे हैं, चमकते हुए सितारे, हमारे पिता परमात्मा, उन्होंने भी एक बहुत सुंदर सपना हमारे लेकर आए। कैन वी मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड टू लिव इन। आप में से कितनों को लगता है कि ये दुनिया बहुत अच्छी दुनिया बन सकती है, वो जरा हाथ उठाए। यस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एम्पावर आवरसेल्फ। अच्छा बनना है, अच्छी दुनिया बनानी है, तो जरूर जरूर हमको स्वयं को अच्छा बनना पड़ेगा। आज परमात्मा की तरफ से एक सुंदर सा गिफ्ट मैं आपको देता हूं, क्योंकि ईश्वर को कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। सभी जोर से बोलिए, फादर एंड मदर आई लव यू। राइट, अब हम लोग एक मिनट के अंदर हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे मेडिटेशन का। सभी सीधे बैठे या ओके। उसके पहले हम लोग थोड़ा जागृत अवस्था के लिए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं कहूंगा वन तो दोनों हाथ हाथ नीचे रखेंगे तो आपका हाथ दुखेगा, पहले सुन लेना। जब मैं कहूंगा वन तो दोनों हाथ रखना, जब मैं कहूंगा यस जोर से ताली बजाना, और महसूस करना आप मन के द्वारा वो सर्वशक्तिवान परमात्मा को स्पर्श कर रहे हो। राइट, जिसको परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वाहे गुरु कहते हैं, खुदा दोस्त कहते हैं। कल सुबह का 6:30 बजे का सत्र जरूर निद्रा जीत बनकर अटेंड करना। ज्ञान सरोवर में आए, भगवान कौन है बहुत ढूंढा, कल का सत्र जरूर जरूर अटेंड करना। मैं 22 वर्ष पहले जब मैंने ये सेशन अटेंड किया, मुझे इतना अच्छा लगा। राइट, हाउ गॉड इज वन। कल का सत्र मुझे विश्वास है जरूर अटेंड करेंगे। तो जब मैं कहूंगा यस, तो महसूस करना उस परमात्मा से, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है, शांति, प्रेम, खुशी और शक्ति धीरे धीरे आपके पास आ रही है। ठीक है, खुशी से करेंगे, मुस्कुराते हुए। हियर वी गो, वन, यस, यस, रिलैक्स। एक और बार करेंगे, खुशी से मुस्कुराते हुए कहना, और मन को भी जोड़ना कि मैं उस ईश्वर को स्पर्श कर रही हूं, उस परम ज्योति को, द सुप्रीम लाइट, द सुप्रीम पावर, लाइट हाउस एंड माइट हाउस ऑफ माई लाइफ। मन के द्वारा उनके साथ स्पर्श करना, और जैसे सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है ना, ऐसे ही महसूस करना ज्ञान, गुण और शक्ति। और आपका नेक्स्ट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूज इन लाइफ, वो भी आप जरूर अटेंड करना। क्योंकि पावर हो गया, पावर कैसे पता चलेगा, जब आप कर्म योगी होकर शांति खुशी से जब अपना कर्म करेंगे, तो पावर के बाद वैल्यूज इन लाइफ। ठीक है, खुशी से कर्म करें, वन, यस, गुड, रिलैक्स। जैसे हम उस ईश्वर को स्पर्श करते हैं ना, हम बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं, शरीर भी शक्तिशाली और मन भी शक्तिशाली। तो एक एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं कहूंगा वन, तो अगर हमारे शरीर में कोई टॉक्सिन्स है, वायरस है, तो है तो ठीक है, नहीं है तो डोंट वरी। लेकिन आजकल दोस्तों शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स तो यहां पर है, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, जेलसी, हेट्रेड, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सारा गड़बड़ी इधर है। तो जब मैं कहूंगा वन, तो अगर शरीर में और मन में अगर कोई टॉक्सिन्स है, तो जब मैं कहूंगा वन, उसको इस तरीके से झटक देना, और जब मैं कहूंगा यस, तो उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक देना। ठीक है, चलो, हियर वी गो, वन, यस, क्या कर रहे हैं आप लोग शिपिंग एविएशन के दोस्त, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब आप वापस जाएंगे ना अपने घर में तो लोग पूछेंगे कैसा था सेशन, पता नहीं कुछ तो सिखा रहे थे ऐसे वैसे, शायद नया योगासन डेवलप किया है। ओ बहन जी, अब अपने सखी को समझाना, हर दिन घर में झाड़ू मारते हो ना, क्यों मारते हो? कि घर का टॉक्सिन घर में रहेगा तो आपको कमजोर करेगा। उसी तरह हर दिन रात को सोने के पहले शरीर का टॉक्सिन तो प्राकृतिक स्तर से बाहर हो जाता है, मन का टॉक्सिन को ठीक करो, दैट इज ऑल्सो मैकेनिज्म। रात को सोने के पहले आज सारा दिन में जो भी हुआ ना सामने लेकर आओ, कुछ ऊपर नीचे हुआ तो माफी मांग लो, किसी को माफ करना है तो माफ कर दो, खर्राटे मार के सो, नहीं तो सारा रात आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। जैसे हमारे यहां विधि सिखाते हैं सुबह कैसे उठना और रात को कैसे सोना, तो हमारे यहां सिस्टम है रात को सोने के पहले मिनिमम 3 to 5 minutes, मैं अपने मोबाइल में टाइमर लगा देता हूं 10 minutes, आज मैं ईश्वर को सामने लेकर आऊंगा, आज सुबह से शाम तक कैसे किया। और मैं कहूंगा 9:30 बजे ना ज्ञान हार्मनी हॉल में शिपिंग एविएशन टूरिस्ट के बहुत सारे हमारे दोस्त बैठे थे, और मैं परमात्मा को कहूंगा बाबा, बाबा कहते कितने अच्छे लोग थे, एक भी मेरे क्लास में नहीं सोया। मैं बाबा को कहूंगा आज रात को मेरा रिपोर्ट जाएगा, राइट, एंड इट विल बी इट्स अ क्रेडिट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, राइट। आप जागृत थे, सुन रहे थे, महसूस, सारा रिपोर्ट आज मैं रात को दूंगा, राइट। और जो भी आज होगा इसके अंदर, मुझे इमीडिएटली शांतिवन जाना है, गॉडलीवुड स्टूडियो में जाना है, वहां मैं जिनसे मिला, डिस्कशन किया, क्या शूटिंग किया, और मैं बोलते 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 सो जाता हूं, दैट इज सो ब्यूटीफुल स्लीप, राइट। तो एक और बार करेंगे, अगर कोई भी टॉक्सिन्स है ना उसको निकाल देंगे, ठीक है। हियर वी गो, 1, यस, तो झाड़ू मार दीजिए। मुंबई में कराने के लिए हर व्यक्ति से 5,000 रुपए लेते हैं, इसको ऑरा क्लीनिंग कहते हैं। हाँ, सारा ईश्वर को दे दो भाई, सारे टॉक्सिन्स, हाँ, जोर से तालियां बजाइए, यस, बैठिए। नाउ यू आर जागृत, ठीक है। नाउ लास्ट 1.5 minutes वी आर गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज, उसके बाद एक अच्छा सा गीत सुनेंगे। ये गीत हमने आज के प्रोग्राम के स्टार्टिंग में भी सुना, वही गीत एंड में भी सुनेंगे, बट नाउ इट विल बी अ वीडियो, आंखें खुली रखना। मैं उस समय जब गीत चल रहा था आप लोग बहुत मोबाइल वोबाइल में थे, लेकिन अभी वो गीत को बहुत ध्यान से सुनकर उसको महसूस करते हुए हम लोग आज का प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। आपका एक बार फिर बहुत दिल से धन्यवाद। मैं शिपिंग एविएशन के आदरणीय डॉक्टर निर्मला, मीरा दीदी, कमलेश बहन जी, सबको बहुत प्यार से धन्यवाद देते हुए हम लोग ये मेडिटेशन स्टार्ट। यू कैन पुट अप अ लाइट म्यूजिक ब्रदर। अब मैं जो बोलूंगा ना वो आप तक पहुंचेगा ध्वनि, आप मन के द्वारा चलते रहना। बाय चांस आपका मन इधर उधर गया, बहुत प्यार से अपने मन को लेकर आइए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है, उसके बाद जरूरत नहीं है, ठीक है। बस हम अपने शरीर को एकदम हल्का करेंगे। मैं 9 to 0 में जाऊंगा, 9, 8, 7, शरीर को जितना हो सके हल्का छोड़ना, ठीक है। फिर धीरे से हम लोग थॉट्स को देखेंगे, ब्रिकुटी के बीच में, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पीसफुल। तो जैसे ही मैं पीसफुल कहूंगा ना तो आपके चेहरे में अपने आप पीस आएगा, लवफुल एंड वेरी पावरफुल, ठीक है। हियर वी गो, ओम शांति, रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली, अलर्ट स्ट्रेट बैठे बट रिलैक्स्ड, यू आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ योर बॉडी कॉन्शियस। आप अपने शरीर को पूरी तरह से स्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि शरीर आपका है, आप शरीर के मालिक हैं, आप शरीर से अलग हैं। आप इस हॉल में बैठे हैं, बी अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस। आपके साथ अन्य भी बैठे हैं, यू आर अवेयर ऑफ देयर प्रेजेंस ऑल्सो। कुछ आवाज आ रही है, किसी का मोबाइल बज रहा है, बट आई विल बी स्टेबल, बिकॉज बाहर की आवाज मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। धीरे से ब्रिंग योर कॉन्शियसनेस from the external to the internal.
आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, बी अवेयर। आपके शरीर में होने वाले रक्त संचार को आप फील कर रहे हैं, बी अवेयर। अब शरीर को जितना हो सके हल्का छोड़िए। आई काउंट फ्रॉम 9 to 0। 9, आंखें थोड़ी खुली हो क्योंकि ध्यान रहे कि हम निद्रा में नहीं जाएं। Here we begin. 9, शरीर को एकदम हल्का छोड़े। 8, आपका शरीर एकदम रुई की तरह, your body is becoming like a cotton. 7, बहुत अच्छा। 6, you're doing extremely good, excellent. 5, बहुत अच्छा। 4, आप जागृत हैं लेकिन आपका शरीर एकदम हल्का। 3, 2, 1, and 0। महसूस करिए ब्रुकुटी के बीच में आप चमकता हुआ एक सितारा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, और आप बहुत शक्तिशाली हो। आप आत्मा पायलट, आपका एथरिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर, एनर्जी बॉडी इज द एरोप्लेन, और आपका स्थूल शरीर रनवे। जैसे एक एरोप्लेन रनवे में चलते चलते टेक ऑफ करता है, उसी तरह आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर इस स्थूल शरीर से डिटैच हो रहा है मन के द्वारा। जैसे जब एरोप्लेन में आप बैठते हो विंडो सीट पे, तो आपको नीचे सब कुछ दिखाई देता है, उसी तरह आप आत्मा रूपी पायलट अपने सूक्ष्म शरीर रूपी एरोप्लेन से धीरे से टेक ऑफ कर रहे हो। नीचे आप देख रहे हैं देह और देह की दुनिया, लेकिन आज आई एम ट्राइंग टू एक्सपीरियंस दिस बॉडीलेस स्टेज, अशरीरी अवस्था। जैसे एक एरोप्लेन बादलों में आकर स्टेबल हो जाता है, उसी तरह आप भी बादलों में। समस्त पृथ्वी बहुत छोटी दिखाई दे रही है, जैसे सूर्य का प्रकाश आपके पास आता, उसी तरह परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, प्रेम का सागर है, शक्ति का स्रोत है, लाइट हाउस और माइट हाउस परमात्मा से ज्ञान गुण और शक्ति आपको मिल रही है। आप बहुत शक्तिशाली, मास्टर सर्वशक्तिवान, यू आर एक्चुअली वेरी स्ट्रांग एंड वेरी पावरफुल। दिल से उस पिता का धन्यवाद देते हुए अपने उस पारलौकिक पिता के हर सपने को पूरा करेंगे। इस दृढ़ता से धीरे धीरे आप वापस आइए। आत्मा रूपी पायलट अपने सूक्ष्म शरीर रूपी एरोप्लेन से धीरे धीरे बादलों से होते हुए नीचे की तरफ, आपको पृथ्वी दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे और नीचे आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, पर्वत दिखाई दे रही है, घर दिखाई दे रहा है, आपको अपना रनवे दिखाई दे रहा है, आपका अपना स्थूल शरीर नीचे। ऑन गॉडली सर्विस आप धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। आत्मा रूपी पायलट सूक्ष्म शरीर रूपी एरोप्लेन से धीरे धीरे रनवे को टच कर रहे हैं। लैंडिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहां बैठकर अपने परिवार के सदस्यों को देखिए। अगली बार जब हम उनसे मिलेंगे तो शांति से, प्रेम से, खुशी से कोई भी चैलेंज हो हम करेंगे। ऑफिस में जाइए, सिचुएशन विल रिमेन द सेम, बट टुडे यू आर एम्पावर्ड। आपका व्यवहार बहुत मधुर लेकिन शक्तिशाली भी। एंड स्लोली रिटर्न बैक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9। अगर आंखें बंद है तो आंखें खोलिए, दोनों हाथों को सामने रखिए, हाथों में श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ सक्सेस, दोनों हाथों को जोड़िए। सीधे सामने रखिए, सभी बोलिए डियर गॉड, प्यार से बोलिए डियर गॉड, आई नो आई एम नॉट परफेक्ट बट थैंक्स अ लॉट फॉर लविंग मी एनी वे, आई एम योर ब्यूटिफुल चाइल्ड। ओम शांति। एक छोटा सा गीत हम सुनकर महसूस करते निकलेंगे। ये आपने कभी इसके पहले भी देखा होगा, बट दिस सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल। लाइट को ऑफ कर दे।
यू, ओम शांति।